जो मिसकैरेजेस होते हैं मेनली हम ब्लेम करते हैं विमेन पे, बट अ लॉट ऑफ टाइम इट्स डिपेंडेंट ऑन मेन स्पर्म क्वालिटी एज वेल।
द स्पर्म क्वालिटी एंड द स्पर्म डीएनए हैज अ लॉट टू डू विद अ हेल्दी बेबी एंड अ हेल्दी एम्ब्रियो। सो ऑलमोस्ट 30-40% ऑफ मिसकैरेजेस या बच्चे नहीं हो रहे हैं ड्यू टू पुअर स्पर्म।
मैं इस टाइम पे स्पर्म फ्रीज करा दूं, कोई भी लड़की उसको भी अगर इस टाइम पे सेम लगता है और वो अपने इस टाइम पे एग्स फ्रीज करा दे तो कैन दे हैव अ सिमिलर बेबी एट लेटर एज?
फ्रोजन एग और फ्रोजन स्पर्म से बच्चा बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है।
अगर आपको हेल्दी बेबीज चाहिए तो व्हाट इज द राइट एज?
20 से 30 साल के अंदर आइडली बच्चे हो जाने चाहिए। आफ्टर 30 थिंग्स गेट मोर डिफिकल्ट।
डू यू थिंक कि इनफर्टिलिटी कंट्री है बहुत ज्यादा बढ़ रही?
इनफर्टिलिटी इज गोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस इन इंडिया। इफ यू लुक एट डेटा स्पर्म काउंट्स डेफिनेटली फॉल कर रहे हैं। आर फोर फादर्स प्रोड्यूस्ड मोर स्पर्म पर एमएल देन व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड आवर चिल्ड्रन गोइंग टू प्रोड्यूस इवन लेस।
क्या ओरल सेक्स से कैंसर हो सकता है?
ओरल सेक्स से कैंसर नहीं होता, एक वायरस होता है एचपीवी बोलते हैं उसको, दैट वायरस कैन कॉज कैंसर।
एक स्टैट पढ़ रहा था 26% मेन हैव लो अर्जेस फॉर सेक्स।
जब मास्टरबेशन इतना इजी एक्सेस हो गया है, पॉर्न इतना वाइड स्प्रेड हो गया है, तो क्यों मेहनत करनी है पार्टनर के ऊपर? पीपल हु मास्टरबेट रेगुलरली दे टेंड टू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर वजनल सेक्स।
सिगरेट से फर्क पड़ता है सेक्स लाइफ?
सिगरेट स्मोकिंग से सेक्स और स्पर्म दोनों पे हार्म होता है। निकोटीन कॉजेज कंट्रैक्शन की वजह से इरेक्टाइल क्वालिटी खराब होती है।
सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं मेन रिलेटेड टू देयर पेनिस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन? Enjoy this episode, but before you do that, Rajchamani clips and Rajchamani shorts को जाके subscribe कर लो, क्योंकि इस बड़े episode की छोटी छोटी clips कम समय में आपको बेहतर leader बनाने में help करती है, वो clips हम वहां डालते हैं। And इस पूरे episode का audio experience Spotify पे available है, जहां पे आप हमें follow कर सकते हैं। Enjoy the show. एक मैं ना बहुत इंटरेस्टिंग जब मैं रिसर्च कर रहा था, एक काफी इंटरेस्टिंग चीज पता चली मुझे। That I think I should start talking to you about that. Start वहाँ से करते हैं। Most miscarriages are not mostly women's problem. They happen because of men. And I'll tell you what the research said. कि जो miscarriages होते हैं उसमें हमेशा ऐसा लगता है हमको mainly हम blame करते हैं women पे। But a lot of time it's dependent on men's sperm quality as well.
Yes.
और तो सब लोगों को लगता है कि विमेन प्रॉब्लम है, बट बहुत बार स्पर्म क्वालिटी की प्रॉब्लम होती है। एंड देन मोस्ट मेन थिंक कि मेरी स्पर्म क्वालिटी जब मैं कंसीव कर रहा हूँ एट द नाइट तब बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। एक्चुअली वो स्टार्ट होती है उस कंसीविंग के 7 से 8 वीक पहले, क्योंकि स्पर्म का प्रोडक्शन उस टाइम पे स्टार्ट होता है। एंड उस जो 7 से 8 हफ्ते पहले जो हमारी लाइफ स्टाइल होती है, मे बी मैं स्ट्रेस में हूँ, मे बी मैं बहुत ज्यादा दारू पीता हूँ, या मे बी मैं बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता हूँ, या मे बी मैं कैफीन बहुत ज्यादा लेता हूँ, या व्हाटएवर जो भी मेरी लाइफ स्टाइल है जैसी बेकार होती है, उसकी वजह से मेरी स्पर्म क्वालिटी इफेक्ट होती है। एंड दैट इज वाई देन मेरी कंसीविंग नाइट पे माय स्पर्म इज बैड, एंड दैट माइट लीड टू अ मिसकैरेज, जो बहुत ही अननोन प्रॉब्लम है जो लोगों को पता भी नहीं। डू यू थिंक सो?
यस, तो इट इज अ ट्रूथ। मतलब इट इज नॉट कि मेरे सोचना इसमें, इट इज अ ट्रूथ।
इट इज ट्रू,
इज अ ट्रू। सो इनफर्टिलिटी या miscarriages, मतलब या so there's a lot of things that we still don't know in medical science. Medical science is an evolving subject. But the sperm quality and the sperm DNA has a lot to do with a healthy baby and a healthy embryo. So almost 30-40% of miscarriages or infertility या बच्चे नहीं हो रहे या बच्चे बार बार गिर जाते हैं is due to poor sperm. So sperms are carrying poor genetic code. देखो end of the day एक चीज जो दो लोगों से बनी है, अगर सपोज कॉफी में दूध है और कॉफी है तो कुछ भी खराब होगा उनमें से एक तो कॉफी में वो टेस्ट नहीं आएगा ना। तो एम्ब्रियो या बच्चे में दोनों पार्ट है ना, मदर का भी है और फादर का भी है। तो फादर का पार्ट हमेशा हेल्दी होगा ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो फादर के पार्ट में कोई प्रॉब्लम होगी चाहे वो स्पर्म, और स्पर्म क्वालिटी जरूरी नहीं कि 7 से 8 हफ्ते पहले वाले लाइफ स्टाइल की वजह से ही स्पर्म क्वालिटी खराब हुई है। तो इट्स ट्रू कि 90 दिन लगता है स्पर्म को मैच्योर होने में। तो अगर आज कोई स्पर्म आप इजैकुलेट कर रहे हो तो 90 दिन पहले बनना स्टार्ट हुआ था, पर 90 डेज के अंदर स्पर्म, ऐसा नहीं कि 90 डेज पहले स्पर्म बन गया और मैच्योर ही हो रहा है। द स्पर्म डिवाइड्स आफ्टर एवरी 5 डेज और 7 डेज एंड देन फाइनली एट 90 डेज यू गेट अ मैच्योर स्पर्म व्हिच कम्स आउट।
ओके,
एंड दैट एंटायर प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, द एंटायर प्रोसेस ऑफ द 90 डेज, उसमें कुछ भी डिफेक्ट बीच में आएगा तो दैट स्पर्म इज नॉट गोइंग टू बी हेल्दी। सो आइडली व्हेन, जैसे कहते ना, व्हेन द लेडी इज रेडी टू कंसीव, सो शी हैज टू क्लीन हर लाइफ स्टाइल एंड शी हैज टू इम्प्रूव हर diet and she has to make care of her nutrition. Same way when a couple is planning, the husband also has to clean his lifestyle and clean his diet.
ladke ke liye bhi utna important
hai, important
hai to maintain that lifestyle and clean
lifestyle, a correct age to conceive. Matlab men, obviously men and women both are the most fertile and the most healthiest when they're younger, बट आजकल सोसाइटी की वजह से हम लोग शादियाँ लेट कर रहे हैं, बच्चे लेट प्लान कर रहे हैं, तो एज इज टेकिंग अ टोल। तो अगर एज से वुमेन के एग्स ख़राब हो रहे हैं तो मेल के स्पर्म्स भी डिटरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो एज करेक्ट होनी चाहिए, आपका लाइफ स्टाइल क्लीन होना चाहिए, आपका टेस्टिकल्स में कोई इंजरी ना हो, टेस्टिकल्स के अंदर एक हेल्दी टेस्टिकल्स हो, आपके हार्मोन लेवल्स ठीक हो, ठीक है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं, जैसे एक्सेसिव वेट है, अल्कोहलिज्म है, स्मोकिंग है, ये सब चीज़ें इंप्रूव हो, सो यू कैन देन प्रिडिक्ट कि बेबी जो है वो हेल्दी होगा और वो मोस्ट प्रॉब्ली पूरी प्रेगनेंसी कवर करेगा।
सो टेल मी कि पर मेजॉरिटी टाइम्स हम वुमेन को ही क्यों ब्लेम करते हैं, मतलब एटलीस्ट सोसाइटी लार्जर वही बोलती है मिसकैरेज हो रहा है तो मतलब लड़की में खराब होगा, लड़की ढंग से कैरी नहीं कर पाई, लड़की हेल्दी नहीं है, लड़की को हरकतें खराब होगी, स्ट्रेस होगा, व्हाटएवर। हर बार मिसकैरेज पे यू मेजॉरिटी टाइम्स आप ब्लेम करते हो टू द फीमेल पार्टनर, बिकॉज ये मेन वाला पार्ट लाइक आई हैव नेवर हर्ड इट, मैं आज रिसर्च के टाइम पे पहली बार सुना एंड देन आपने बताया तो नाउ इट मेकिंग सेंस।
सो हमारी जो सोसाइटी है वो क्विक टू ब्लेम द वुमन है, वुमन डिप्रेस्ड पार्टनर है, मतलब ट्रेडिशनली। पर आज के दिन गायनेकोलॉजिस्ट वो क्लियर है, समबडी इज हैविंग रेकरेंट मिसकैरेज, कोई लेडी जिसको दो बार मिसकैरेज हो गया, तो वुमन इवेल्युएशन के साथ में मेल इवेल्युएशन होता ही होता है।
बट डू यू थिंक इतनी अवेयरनेस है कि मेन यूजुअली जितना वुमेन एक गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाती है मेन उतना जाते हैं?
पहली बात है मेन को पता ही नहीं जाना कहाँ पर है, ठीक है। अभी भी
लाइक किसके पास जाना चाहिए मेन को?
सो मेन शुड गो टू एंड्रोलॉजिस्ट। सो
एंड्रोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए?
तो यूरोलॉजिस्ट, अभी इंडिया में एंड्रोलॉजी जो है वो एक अपकमिंग फील्ड है, तो एंड्रोलॉजी का कोई डिग्री नहीं है अभी इंडिया के अंदर, तो इंडिया में यूरोलॉजिस्ट होते हैं, तो यूरोलॉजिस्ट यूजुअली आर ट्रेंड इन एंड्रोलॉजी और वो मैनेज करते हैं।
ओके,
बट नाउ स्लोली विद हमारी जैसे सोसाइटी है, हमने अपना सब डिविजन बनाया है, फेलोशिप स्टार्ट हो गई है, तो लाइक व्हेन आई स्टार्ट एंड्रोलॉजी उस टाइम इतनी फेलोशिप नहीं थी, तो आई वेंट अब्रॉड, बट अब इंडिया में दे आर सेंटर्स जहां पर एंड्रोलॉजी ही प्रैक्टिस हो रही है। सो नाउ यू कैन प्रेफरेबली गो टू अ गाय हू इज, जो जैसे यूरोलॉजी में भी बहुत से सब डिविजन है, तो यूरोलॉजिस्ट में एक डॉक्टर है जो किडनी स्टोन कर रहा है, एक डॉक्टर किडनी ट्रांसप्लांट कर रहा है, एक डॉक्टर है जो सिर्फ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करता है, उसमें एक सब डिविजन है, कुछ 10-20% मेरे जैसे लोग हैं जिनको इंटरेस्ट है मेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, सेक्सुअल डिसफंक्शन, स्पर्म डिसफंक्शन, तो वो एंड्रोलॉजिस्ट है। तो अगर आपको अपने शहर में एक डॉक्टर मिले जो एंड्रोलॉजी ही प्रैक्टिस कर रहा है, जिसके पास ट्रेनिंग है, तो प्रेफरेबल है, वरना इफ यू डोंट हैव समबडी बिकॉज इतने ज्यादा है नहीं, तो यूरोलॉजिस्ट विल आल्सो बी एबल टू मैनेज।
गॉट इट। सबसे ज्यादा गलतियां क्या करते हैं मैन, गिव मी टॉप 3 मिस्टेक्स जो अगर किसी लड़के को प्रॉब्लम होती है कोई भी रिलेटेड टू देयर पीनिस और रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन और वेरेवर, ओके, तो वो सबसे बड़ी सबसे मेजर 3 मिस्टेक्स कौन सी करते हैं?
3 गलतियां सिंपल है, पहला तो इग्नोर करेंगे चीजों को जब तक ही प्रॉब्लम बढ़ ना जाए,
कुछ नहीं मैं देख लूंगा,
ठीक, देख लेंगे हो जाएगा, ठीक अपने आप ठीक हो जाएगा, इट विल गेट ओके, इमिनेंट हो भी जाता है ठीक अपने आप। सेकंड इज दे गूगल इट, एंड गूगल पे दे ऑलवेज फिगर आउट कि कैंसर है, जबकि कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बिकॉज गूगल का बाई डिफॉल्ट, गूगल और एनी एल्गोरिथम फॉर दैट मैटर विल ऑलवेज, वही हॉरर बोला ना थ्रिल, वो आपको सबसे स्केरी टेक्निक पहले बता देगा, ठीक है, एंड देन दे कीप ऑन
हर चीज में।
और तीसरा दे आस्क देयर फ्रेंड, एंड फ्रेंड्स से पूछ सबसे वर्स तरीका है किसी भी चीज को, क्योंकि एक तो आपने बड़ा ट्रस्ट करके फ्रेंड से बात करी और वो फ्रेंड उसको उतना ही लाइटली और उतना ही ह्यूमरसली ले लेगा आपको, तो आपका एक तो वो मजाक सा बन जाएगा, आप और एम्बेरस हो जाओगे और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करोगे, प्लस फ्रेंड जो आपको एडवाइस देगा वो भी गूगल से पढ़ के देगा, ठीक है, तो इट इज वेरी कॉमन।
कमिंग बैक टू अवर फर्स्ट टॉपिक की इनफर्टिलिटी जो आपने बोला, तो डू यू थिंक की इनफर्टिलिटी कंट्री है बहुत ज्यादा बढ़ रही?
तो इनफर्टिलिटी ऑब्वियसली ऑन द राइज है, सो इनफर्टिलिटी इज इफ यू लुक एट, तो इनफर्टिलिटी इज ग्रोइंग एट अ वेरी रैपिड पेस इन इंडिया, ठीक है। उसके मेरे को लगता है 2 रीजन है, एक तो इनफर्टिलिटी एक्चुअली बढ़ रही है और दूसरा इनफर्टिलिटी आइडेंटिफाई भी हो रही है, ठीक है, पहले इनफर्टिलिटी आइडेंटिफाई नहीं होती थी, किसी को मतलब किसी को बच्चे नहीं हुए तो नहीं हुए, वो इलाज कराते भी नहीं थे, ठीक है, मेनी टाइम्स विल फाइंड फैमिली में कोई है जिसको बच्चे नहीं हुए, उन्होंने गोद ले लिया, अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, ट्रीटमेंट कुछ था ही नहीं कुछ। पर इफ यू लुक एट द ग्रोथ ऑफ इंदिरा IVF और अदर IVF सेंटर्स व्हिच इज एक्सप्लोडेड, ठीक है, लाइक इंदिरा IVF इज नाउ बीइंग टेकन ओवर बाय वेंचर कैपिटलिस्ट बिकॉज दे लुक एट द वास्ट पोटेंशियल ऑफ दिस IVF टू ग्रो, तो इनफर्टिलिटी इज एक्सपेंडिंग एट अ रैपिड पेस, एंड मेरा प्रैक्टिस का 30% ऑफ लोड इनफर्टिलिटी है, मेल इनफर्टिलिटी, स्पर्म काउंट इश्यूज एंड नॉट एबल टू हैव चिल्ड्रन, तो इनफर्टिलिटी इज ग्रोइंग एंड ऑल्सो इनफर्टिलिटी इज बींग ट्रीटेड, तो दोनों चीजें हैं, तो आई थिंक वी आर नॉट वेरी क्लियर कि एक्चुअली इनफर्टिलिटी सोसाइटी में बढ़ गई है या जो पहले नहीं सामने आ रहे थे वो अब डायग्नोज होने लग गया है, वो क्लियर नहीं है. बट इफ यू लुक एट डेटा तो स्पर्म काउंट्स तो डेफिनेटली फॉल कर रहे हैं अक्रॉस द स्पेक्ट्रम. सो आर फोर फादर्स प्रोड्यूस्ड मोर स्पर्म पर ML देन व्हाट वी आर प्रोड्यूसिंग एंड आर चिल्ड्रन गोइंग टू प्रोड्यूस इवन लेस. अब उसके बारे में बहुत सारी रिसर्च है, बहुत सारी थ्योरीज है. कोई कहता है ग्लोबल वार्मिंग से हो रहा है, इंक्रीज स्ट्रेसर से हो रहा है, हमारी लाइफस्टाइल हैबिट से हो रहा है, हमारे जो जंक फूड इनटेक है उससे हो रहा है, जो खाने माइक्रो प्लास्टिक्स है जो हम प्लास्टिक्स में फूड ले रहे हैं उससे हो रहा है, फर्टिलाइजर यूज से हो रहा है. ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग. रेडिएशन एक्सपोजर से हो रहा है, ठीक है, यूवी हो चाहे वो फ्लोरेन मतलब पोल्यूटेंट से हो रहा है. बट स्पर्म काउंट डेफिनेट डिक्लाइन कर रहा है, स्पर्म क्वालिटी डिक्लाइन कर रही है, और इसके साथ में लेट मैरिजेस कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है. तो स्पर्म काउंट ड्रॉप करता ही है, बट जैसे यू आर गेटिंग मैरिड 30 एंड यू प्लानिंग अ चाइल्ड एट 35, तो स्पर्म काउंट भी कम है और कम हो गया, फीमेल इनफर्टिलिटी वाला कॉम्पोनेंट भी बढ़ गया, तो बच्चे मुश्किल.
सो डू यू थिंक इट्स बैड, लेट शादी करना गलत है?
नहीं मतलब गलत तो अच्छा तो नहीं है, पर फ्रॉम फर्टिलिटी स्टैंड पॉइंट तो बैड है. तो
एक्सप्लेन मतलब कौन सी एज पे अगर आपको हेल्दी बेबीज चाहिए तो व्हाट इज द राइट एज फॉर अ मैन एंड अ वुमन टू मैरी एंड हैव किड्स? लेट्स से मैरी भी छोड़ो,
देयर इज नो राइट एज, देयर इज अ रेंज,
रेंज
इन व्हिच हेल्दी बेबीज कैन बी बोर्न.
ओके,
तो उसमें रेंज में एक तो है कि बहुत मतलब इस एज से कम भी नहीं होना चाहिए और इस एज के बाद भी मुश्किल आती है. तो 20-30 ईयर्स, 20-30 साल के अंदर आइडली बच्चे हो जाने चाहिए,
मैन वेमेन बोथ
दोनों में. 20 साल के ऊपर द लेडीज मेच्योर, द हस्बैंड इज मेच्योर टू हैव चिल्ड्रन. अब वो फाइनेंशियल मेच्योरिटी इमोशनल मेच्योरिटी अलग बात है, पर फिजिकली मेच्योर है, फिजिकली उनका यूट्रस ठीक है, इनका पेनिस ठीक है, उनका एग्स ठीक है, इनका स्पर्म ठीक है, और फर्टिलिटी बहुत हाई रहती है. तो हो सकता है कि एक या दो बार के अंदर ही बच्चे हो जाते हैं, रुक जाते हैं. ठीक है, एज द एज ऑफ द कपल इंक्रीजेस तो एग क्वालिटी भी पुअर हो जाती है और स्पर्म क्वालिटी डिक्लाइन करती है. ठीक है, प्लस सेक्सुअल फंक्शन डिक्लाइन करता है, जो हॉर्नीनेस है, जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है, जो हार्डनेस है, जो लिबिडो है, फ्रीक्वेंसी वो डिक्लाइन करती है. ठीक है, एंड देन 30 के बाद तो दिक्कत आती है. आफ्टर 30 थिंग्स गेट इवन मोर डिफिकल्ट, एंड आफ्टर 35 द एग क्वालिटी डिक्लाइन इवन फर्दर. तो वुमन गेट्स, फॉर द लेडी गेट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंसीव नेचुरली, एंड मेनी टाइम्स वेन वी चेक देयर हस्बैंड्स उनकी स्पर्म क्वालिटी भी पुअर आती है. तो देन यू गेट बोथ साइड्स प्रॉब्लम, कि स्पर्म क्वालिटी भी पुअर हो गई है, एग क्वालिटी भी पुअर हो गई है, एंड देन इट बिकम इवन मोर डिफिकल्ट.
सो ओके, यू नो बिकॉज यू सेड कि मैच्योरिटी, आई फील कि अगर बायोलॉजिकली बायोलॉजी मैच्योरिटी जो होती है वो 20-30 के बीच में होती है,
बिल्कुल,
बट उस टाइम पे बेबी होने की या फैमिली स्टार्ट करने के लिए साइकोलॉजी मैच्योरिटी भी तो होनी चाहिए और वो होती नहीं है. तो साइकोलॉजिकली लोग मैच्योर नहीं है, बायोलॉजिकली लोग मैच्योर है, पर इस चीज को मैनेज कैसे करें? डू यू थिंक जो फ्रीज करते हैं लोग एग्स, दैट इज अ गुड वे टू डू इट? कि अगर मैं 20-30 में हूँ लेट्स से, एंड टुडे मुझे नहीं लगता कि मैं साइकोलॉजिकली इतना मैच्योर हूँ कि आई कैन हैव अ फैमिली एंड बेबीज, देन मैं इस टाइम पे मेरे मे बी स्पर्म्स फ्रीज करा दूँ, एंड जो लेट कोई भी लड़की उसको भी अगर इस टाइम पे सेम लगता है और वो अपने इस टाइम पे एक्स फ्रीज करा दे तो कैन दे हैव अ सिमिलर बेबी एट लेटर एज?
देखो फ्रीजिंग इज लाइक एन FD, इज अ फिक्स डिपॉजिट, आपने फ्रीज कर दी और आपके पास एक हेल्दी स्पर्म और हेल्दी एग फ्रोजन है, बट फ्रोजन एग और फ्रोजन स्पर्म से बच्चा बनेगा ये कोई गारंटी नहीं है. ठीक है, ऐसा नहीं कि फ्रोजन एग और फ्रोजन स्पर्म गारंटीड डिपॉजिट हो सकता है, बैंक बंद हो जाए और डिपॉजिट खराब हो जाए. ठीक है, तो व्हेन यू फ्रीज एग्स एंड स्पर्म्स पीपल थिंक कि हमने एग्स फ्रीज करा दिया, स्पर्म फ्रीज करा दिया और कल हम बच्चा करना होगा तो उस टाइम हो ही जाएगा. ऐसा नहीं होता. सो यू फॉर अ वुमन नॉट, अगर आपने सपोज 30 साल में हमने एग्स फ्रीज करा दिए और आप 35 साल में बच्चा करना चाह रहे हो सकता है आपका यूट्रस बेबी को ना एक्सेप्ट करे. ठीक है, तो यू इज पॉसिबिलिटी दैट यू मे नॉट बी एबल टू कैरी थ्रू द एंटायर प्रेगनेंसी, एंड प्रेगनेंसी टेक्स अ टोल ऑन द बॉडी ऑल्सो. ठीक है, प्रेगनेंसी इज नॉट लाइक अ सिंपल थिंग. एक लेडी के लिए 9 मंथ्स तक प्रेगनेंसी कैरी करना इज नॉट, तो अगर जैसे इट टेक्स अ लॉट ऑफ टोल ऑन हर माइंड, हर इमोशनल लेवल, हर 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 ह्यूमन हर हारमोन्स, हर बॉडी वेट गेन, तो बहुत चीजें होती है. तो सिर्फ एग फ्रीज कराना मेरे हिसाब से एक स्टॉप गैप मेजर है कि ठीक है मेरा एक ब्लड लाइन एक्टिवेट रहेगा, पर मुझे लगता है कि 35 साल में 36 साल में बेबी करने में आपको एक तो फिजिकली आपको टोल लगता है, जो 25 साल की लेडी है वो बेयर कर लेगी एज कम्पेयर टू 36 ईयर ओल्ड लेडी. ठीक है, सेकंड है कि बच्चे की अपब्रिंगिंग भी कहीं ना कहीं इफेक्ट होती है. आज फॉर एग्जांपल एवरेज लाइफ स्पैन 60 है, 62 इंडिया के अंदर. आपका बेबी 25 साल में हुआ तो आपके पास 35 साल है उसको ब्रिंग अप करने के लिए, 35 इयर्स तक यूजली लोग मैच्योर हो जाते हैं, अपनी लाइफ चालू कर लेते हैं। हैविंग अ चाइल्ड 35, यू ओनली हैव 25 इयर्स टू ब्रिंग द चाइल्ड अप, ठीक है। एंड इफ यू हैविंग एट 40 तो यू ओनली हैव 20 इयर्स, तो बच्चा मतलब इंडियन 20 साल तक तो जॉब भी नहीं लगती लोगों की, ठीक है। तो 21 साल तो अगर आप 20 साल 22 साल में इफ यू लुक एट नॉर्मल लाइफ एक्सपेक्टेंसी एंड समबडी जस्ट डाइंग एट 62, उनके बच्चे तो सेटल भी नहीं हुए। तो ये बड़ा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग है, ये यूएस थिंकिंग नहीं है। वहां तो है कि बच्चा पैदा कर दिया बस उसका बच्चा अपने आप सेटल होगा,
हाँ।
पर इंडिया में तो पेरेंट्स का रहता है कि बच्चे की शादी करा के उसके सेटल करके उसके ग्रैंड चिल्ड्रन देख के
तक हमारा ही है, हाँ। उसके बाद बड़ा होता है, इनफैक्ट लेट तक 40 तक बच्चे घर में रहते।
तो अगर आप 36 पे बच्चे कर रहे हो तो आप 24 साल ही दे पा रहे हो उनको, ठीक है। और जो एक ग्राइंड है मदर की, मुझे लगता है आई डोंट नो दिस कैन बी लाइक कंसीडर्ड सक्सेस, बट जो ग्राइंड है एक पेरेंट कपल्स की कि भाई आप 25 से बच्चा करते हो, स्कूल भेजना है, कॉलेज के तैयार करना है, जो एक वो ग्राइंड है 15 साल की, वो 25 साल से 40 साल की एज में आप ज्यादा बेटर कर लोगे एज कम्पेयर टू 36 साल पे स्टार्ट करके 50 साल तक।
यार लेकिन यू टेल मी कि लोग आज की जनरेशन में मतलब वो अभी खुद को लेके श्योर नहीं कि उन्हें क्या पसंद है उन्हें क्या ना पसंद है, वो साइकोलॉजिकली इतने मैच्योर नहीं है, वो इमोशनली इतने मैच्योर नहीं है, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, लोग इतने आसपास चेंज होते जा रहे हैं, मुझे नहीं पता कैसे ट्रीट करना है, राइट। और 20s to 30s में लोगों को ये श्योरिटी नहीं होती कि पार्टनर राइट कौन है, मेरे इमोशनल वैल्यूज राइट क्या है, जब यही श्योर नहीं है उस टाइम पे एक और लाइफ लेके आ जाओ और उसकी मैं परवरिश कैसे करूंगा या करूंगी, वो कैसे श्योरिटी आएगी। सो दैट्स वाई पीपल आर थिंकिंग टू हैव लेट बेबीज, राइट। प्लस अ लॉट ऑफ कपल्स जिनके लिए बच्चा पैदा करना मतलब एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन भी होता है, राइट। और जो यूजुअली जिनके पास करोड़ों रुपए फैमिली के नहीं है या जिनकी खुद की प्रैक्टिस सेटल नहीं है, वो एक जॉब पे जाते हैं और वो 25 से 50 हज़ार रुपये महीना कमाते हैं, उसके बाद गिविंग देयर किड्स द राइट एजुकेशन द राइट थिंग, उस सब के लिए उनके पैसा इकट्ठा करना है। सो इन सब को करने में टाइम लगता है ना, अगर 25 में हमारी नौकरी लगती है तो 30 तक तो पैसे भी इकट्ठे नहीं होंगे।
ये प्रॉब्लम ना वेस्ट की है जो इंडिया में आ रही है। व्हाई इज जापान डिक्लाइनिंग, जापान में बच्चे नहीं हो रहे, द कम्युनिटी इज डिक्लाइनिंग, फर्टिलिटी रेट इज डाउन। सो दिस विल ऑलवेज हैपन विद इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड देन यू मूव फ्रॉम फार्मिंग सोसाइटी टू इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू अ सर्विस सोसाइटी। आप पहले क्या था, होल देयर वाज जॉइंट फैमिलीज, बच्चे पैदा करना वो तुम्हारा डिसीजन, बच्चे पैदा करना वो कंसीडर्ड कि ऑप्शन ही नहीं है, बच्चे करने ही है,
हाँ, कर लिया और बाकी घर वाले कर लेते थे ना,
बच्चे पाल लेंगे, मां-बाप पाल लेंगे, बच्चे ताऊ बच्चे मतलब घर में 7 बच्चे हैं, ताऊ के चाचा के सब खेल रहे हैं आपस में, खा पी रहे हैं, कॉमन पूल है, पैसे का तो टेंशन ही नहीं थी, तो लोग बच्चे कर लेते टाइम पे, बच्चे बढ़ भी जाते। हम जैसे हम थे अभी बॉर्न इन अ जॉइंट फैमिली,
सेम हम जो जॉइंट फैमिली,
तो जॉइंट फैमिली क्या था कि मेरे पेरेंट्स ने शायद सोचा नहीं था कि बच्चे हम कब करेंगे फाइनेंशियली, कब उनका था कि शादी हुई बच्चे करने हैं, 2 बच्चे कर लिए, वो बच्चे अपने आप बढ़ गए, रियलाइज भी नहीं किया कि बच्चे क्या बढ़े। आई थिंक 10th स्टैंडर्ड में जाके मेरे डैड ने पहले पूछा था मुझे करना क्या लाइफ में, ठीक है 10th तक ऐसे ही पहुंच गए, 10th तक चल रहा है, और 10वीं में पूछा करना क्या है, तो अच्छा मेडिकल लाइन लूंगा, तो मेडिकल लाइन में ठीक है तो मेडिकल लाइन ले ले, एंड देन माय फादर साइड की भाई, माय फादर वाज अ बिजनेसमैन कि भाई गले में बैठना है या पढ़ाई करनी है, मैंने कहा नहीं पढ़ाई करनी है, मुझे घर का काम नहीं करना, तो फादर से ठीक है फिर मैं अपना काम वाइंड अप कर देता हूँ, वो भी मुझे इसको बढ़ाना नहीं है तो पढ़ाई कर ले, तो देन आई क्लियर माई नीट एंड ऑल ऑफ दैट एंड देन दैट प्रोसेस स्टार्टेड, बट कोई प्लानिंग नहीं थी उसमें, इट वाज लाइक कि बस बच्चे पैदा होंगे और
पहले ऐसे ही होता था।
अब उसके बाद हमारी जनरेशन, जैसे मैंने शादी लेट करी, हमारे बच्चे भी लेट हुए, तो फिर भी थोड़ा सा था, पर आई थिंक फ्यूचर में डिफिकल्टी आने वाली है ये, एंड दिस विल ऑलवेज हैपन व्हेन न्यूक्लियर फैमिलीज आर देयर, व्हेन यू आर नॉट सेटल्ड, व्हेन यू डोंट हैव एनीबॉडी टू फॉल बैक ऑन, वेर यू फील द एंटायर रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की अकेले की है बच्चे को पैदा करने की, बड़ा करने की, तो सोचना पड़ेगा। और इसलिए नॉर्डिक कंट्रीज है, नॉर्वे है जैसे बच्चे नहीं होते सरकार पालती है बच्चे, जापान है बच्चे नहीं हो रहे सरकार पाल रही है बच्चे, तो डिक्लाइनिंग फर्टिलिटी रेट्स इसी को बोलते हैं, दैट्स हाउ सोसाइटीज डिसअपीयर एंड विल गेट ओवर।
अभी जैसे डिंक बहुत बढ़ रहा है, डबल इनकम नो किड्स, राइट, दैट कि दोनों पार्टनर काम करते हैं, अगर दोनों पार्टनर काम करते हैं तो उनके लिए कितना डिफिकल्ट है 25 में बच्चा करना, बिकॉज दोनों में से या तो मैन या वेमेन दोनों में से एक को कहीं ना कहीं अपना करियर थोड़ा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट इनिशियल 2-3 ईयर्स उन्हें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, भले टर्न बाय टर्न या इंडिविजुअली हुएवर टेक्स केयर, फिर उसके बाद बॉडी फिजिकली फाइनेंशियली साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगा, टोल करेगा तुम्हें, एंड इन सब के बाद परमानेंट एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि डेली तुम लाइफ टाइम यू कैन नेवर गो बैक टू विदाउट हैविंग किड्स,
तो ये वर्ड लोग सब मैनेज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही वर्ड जो है ना मेरे को लगता गलत है। पहले बच्चे वो कंसिडर्ड एसेट्स, देखो कंसिडर कि जिस घर में ज्यादा बच्चे हैं ना वो घर ज्यादा फलेगा फूलेगा, मुझे लगता है कि दो बच्चे होने चाहिए, मेरा पर्सनल मानना है। सिब्लिंग्स होते हैं, दोनों एक दूसरे का सपोर्ट बनता है। कल को हम नहीं भी है तो बच्चे आपस में कोई तो है उनका जो कह सकते हैं कि हाँ जी हमारा है, ठीक है, रिलेशन बनते हैं, ठीक है।
पर क्वेश्चन इज कि मैंने बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स देखे जिन्होंने बहुत जल्दी शादी कर ली और बहुत जल्दी शादी करके 24, 22, 23 एंड उनका 26 में 27 में बच्चे हैं, और अब वो काफ़ी परेशान है इन टर्म्स ऑफ कि उन्हें ये लगता है कि यार मतलब उन्हें नहीं पता कि लाइफ कैसे चल रही है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका किसको क्या काम करना चाहिए, क्या वो फाइनेंशियली इतने स्टेबल थे कि जिन्होंने उन्होंने एक बच्चा करने का डिसीजन ले लिया, क्या वो इमोशनली हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे के साथ इतने मेच्योर हो चुके थे रिलेशनशिप में जहाँ वो एक दूसरे की मतलब वो दिया लाइक कि हम बच्चे के ऊपर लड़ ले रहे हैं, राइट। सो मैंने बहुत सारी चीज़ देखी। सो डू यू थिंक कि जब एक इंडिविजुअल इमोशनली और फाइनेंशियली मेच्योर नहीं है पर वो बायोलॉजिकली क्योंकि वो राइट एज है बच्चा करने की 25-26 के आसपास, तब उसे कर लेना चाहिए इवन बीइंग इमेच्योर इमोशनली एंड फाइनेंशियली?
देखो इसका मतलब इसका दिस इज लाइक अ टफ क्वेश्चन टू आस्क मी बिकॉज आई पर्सनली बिलीव कि बच्चे कर लेने चाहिए, मेरा पर्सनल मानना ही है।
इवन दो
यू आर नॉट फाइनेंशियली इमोशनली मैच्योर बिकॉज कभी आप हो नहीं पाओगे ना, दैट विल नेवर हैपन। हर चीज की पर्टिकुलर एज होती है, हर चीज का एक पर्टिकुलर टाइम होता है जब वो चीज प्रॉपरली हो जाती है। एंड आई एम येट टू सी एनी बडी हु एनी वुमन और एनी मैन हु सेज कि मैं रेडी हूँ बच्चा करने के लिए, ठीक है,
नेवर।
कभी भी नहीं वो एज आएगी जब वो कहेंगे कि हम अब इस पॉइंट पे हम रेडी है, ठीक है। एक पॉइंट आएगा फोमो में, फेयर ऑफ
फोमो में,
हाँ, कि अब 35 के हो गए बच्चे नहीं हो रहे, अब कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ कपल जो आते हैं यही बोलते हैं कि 35 के हो गए कपल, अब सेटल हो गए, अब ठीक है, ही इज वाइस प्रेसिडेंट, आई एम वाइस प्रेसिडेंट, नाउ आई कैन टेक अ ब्रेक मे बी फॉर अ ईयर, ठीक है, एंड देन आई कैन प्लान अ चाइल्ड। तो आई डोंट थिंक चिल्ड्रन एवर बी प्लान्ड, ठीक है, बच्चे को भी प्लान नहीं होते, बच्चे हो जाते हैं।
ओके, लेट्स गो लिटिल डीपर इन दिस कॉन्वर्जेशन ओनली कि इनफर्टिलिटी के बाद। ओके, इसमें आपने दो तीन पॉइंटर्स बोले। फर्स्ट वाज एक आपने पॉइंट बोला कि स्पर्म क्वालिटी हमारी रिड्यूस होते जा रही है,
बिल्कुल
राइट। मैं इनफैक्ट एक स्टैट पढ़ रहा था कि 26% मेन जब इनसे, दिस वाज आई थिंक स्टैट ये यूएस में किया गया था, यूके में किया था, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्ट कंट्री, कि 26% मेन हैव लो अर्जेस फॉर सेक्शुअल डिजायर्स। मतलब 1 out of 3 इफ यू लुक एट मेन मोस्टली उनको सेक्स करना नहीं है या वो नहीं करते हैं या उनको डिजायर ही नहीं होती, एंड इट इज डाइंग। और ये 10 साल पहले किया था और 10 साल बाद वापस किया, तो 180% इंक्रीज है इन पीपल हु डोंट वांट हैव सेक्स, स्पेशली मैन। सो डू यू थिंक इसका रिलेशन भी टेस्टोस्टेरोन कम बनता है या स्ट्रेस ज्यादा है उससे रिलेटेड है कि कुछ और रीजन होगा?
नहीं, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड टू लिबिडो, बट टेस्टोस्टेरोन इज नॉट द ओनली हार्मोन दैट रेगुलेट्स लिबिडो। तो अभी वी हैव सो मच रिसर्च व्हिच सेज दैट प्रोलैक्टिन रेगुलेट्स लिबिडो, E2 रेगुलेट लिबिडो, SHBG रेगुलेट्स लिबिडो। तो वी एज चिल्ड्रन अंडरस्टैंड द एंटायर टेस्टोस्टेरोन थ्योरी, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन लो है, डेफिनेटली लिबिडो कम होगा, बट क्या टेस्टोस्टेरोन ही है जिसकी वजह से लिबिडो कम हो रहा है, वी डोंट नो। सेकेंड है द इंक्रीजिंग प्रेवलेंस ऑफ सेल्फ स्टिमुलेशन एंड मास्टरबेशन। मुझे बहुत स्ट्रांगली लगता है कि पीपल आर हैप्पियर वॉचिंग पॉर्न एंड यू नो सेल्फ मतलब सी सेक्स को दो टाइप में डिवाइड करेंगे ना, एक तो पार्टनर वजाइनल इंटरकोर्स है जिसमें आप पार्टनर के साथ सेक्स कर रहे हैं, जिसके अंदर एफर्ट लगता है, जिसमें आपको पार्टनर ढूंढना है, उसको कन्विंस करना है, फिर आपको सेक्स करना है, फिर आप इंटरकोर्स में उसको प्लेजर करना है उसको, एंड वन इज कि आप सेल्फ स्टिमुलेशन कर लो और यू जस्ट मास्टरबेट सीइंग पॉर्न एंड यू जस्ट इट्स अप टू यू व्हेनेवर यू वांट टू डू इट। जब मास्टरबेशन इतना ईजी एक्सेस हो गया है, पॉर्न इतना वाइड स्प्रेड हो गया जब आपको, तो क्यों मेहनत करनी है पार्टनर के ऊपर, ठीक है। तो
आई थिंक दैट्स अ बिग रीजन फॉर इट।
आई थिंक दैट्स अ वेरी बिग रीजन व्हाई पीपल आर नॉट वांटिंग प्लस मतलब व्हाट आई सी इन प्रैक्टिस इज दैट पीपल हु मास्टरबेट रेगुलरली दे टेंड टू स्टार्ट लूजिंग इंटरेस्ट इन यू नो फाइंडिंग अ पार्टनर फॉर वजनल सेक्स, प्लस पॉन देख के द एक्सपेक्टेशन जो सेट हो जाती है कि सेक्स शुड बी अ सर्कस ऑफ 45 मिनट्स, देन दे डोंट फील कॉन्फिडेंट इनफ टू एक्चुअली गो एंड हैव सेक्स विद समबडी। So the confidence level start getting low. They don't think that they will last that much longer. They start having erectile dysfunction issues. They start having premature ejaculation issues. Plus what they have built up in their head. So that, I feel that may be affecting why people don't want to have penovaginal sex. जिसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी।
ठीक है। Question on this. Porn की वजह से क्या-क्या खराब हो रहा है? You said कि do you think porn should be there or no?
I don't think porn should be there, but then porn is there. ठीक है, तो वो है तो उस
पॉन नहीं होना चाहिए
मेरे हिसाब से, नहीं पॉन होना चाहिए, इतना इजीली एक्सेसिबल नहीं होना चाहिए।
ओके, क्यों, क्या खराब कर रहा है पॉन?
एक तो पॉन से मुझे लगता है कि वी आर लूजिंग आवर एबिलिटी टू फोकस ऑन वन वुमन और वन पार्टनर, ठीक है, वी हैव गेटिंग डेवलपिंग द एबिलिटी टू कॉन्स्टेंटली स्वाइप एंड कीप चेंजिंग आवर स्टिमुलेशन, ना स्टिमुलस जो मिलता है। तो नॉर्मली व्हेन आइडियली व्हेन यू हैविंग सेक्स विद वन वुमन वंस, यू वेरी एक्साइटेड, आपने हो गया, नाउ सेकेंड थर्ड, सो मेनी ऑफ द यंगर गाइज हु विल कम टू द क्लिनिक स्टार्ट हैविंग द प्रॉब्लम कि दे नॉट एबल टू हैव सेक्स विद द सेम वुमन मे बी आफ्टर 4 or 5 times, ठीक है। जैसे पहले होता था कि यू हैव विद इन अ मैरिड रिलेशनशिप एंड यू आर हैविंग सेक्स कंसिस्टेंटली विद द सेम वुमन ओवर ईयर्स आफ्टर वन बेबी एंड अनदर बेबी, एबल टू मेंटेन वो, यू आर कॉन्स्टेंटली वॉन्टिंग समथिंग न्यू, ठीक है। सेकेंड है कि यू आर डेवलपिंग दिस कॉन्स्टेंट डोपामिन सर्जेस, ठीक है, सीइंग, तो व्हाट हैपेंड, डोपामिन सर्ज की प्रॉब्लम क्या है कि डोपामिन इज अ रिवॉर्ड, रिवॉर्ड
केमिकल इन द ब्रेन,
रिवॉर्ड केमिकल इन द ब्रेन, बट प्रॉब्लम विद डोपामिन और एनी रिसेप्टर इन द बॉडी इज कि इफ यू कॉन्स्टेंटली कीप स्टिमुलेटिंग इट, यू नीड मोर एंड मोर टू गेट द सेम अमाउंट ऑफ इफेक्ट। तो व्हाट हैपेंस इज कि इफ यू आर इन वन एपिसोड ऑफ मास्टरबेशन यू आर गोइंग थ्रू 7 or 8 or 9 or 10 डिफरेंट स्टिमुलेशन, सो योर एबिलिटी टू गेट टर्न ऑन ट्रेंड्स टू स्टार्ट गोइंग डाउन, ठीक है, आप टर्न ऑन ही नहीं हो पाते हो एक पार्टनर के साथ ना, पूरा वो टर्न ऑन आपको चाहिए, रोल प्ले चाहिए, फिर आपको फेटिश चाहिए, फिर आपको कई कपल्स आज के दिन पॉर्न देख के अराउज होते हैं, ठीक है, दे नॉट एबल टू गेट अराउज विद देयर वाइफ, तो उनको लगता है पॉर्न देखो पहले फिर अराउज हो फिर सेक्स करेंगे, तो ऑल दिस थिंग्स स्टार्ट कमिंग इन,
रियली दिस इज हैपनिंग,
दिस इज वेरी वेरी कॉमन, वेरी कॉमन कि दे वॉन्ट, दे विल वॉच
एक, मतलब एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के साथ अराउज ही नहीं हो पा रहा है,
अराउज ही नहीं हो पा रहा है,
एंड दे नीड एन एक्सटर्नल
स्टिमुलस, तो वो स्टिमुलस रोल प्ले में आ रहा है, या तो वो बोलेंगे जी इस तरह का हमें रोल प्ले करना है, ठीक है, या वो पॉर्न देख के आ रहा है, ठीक है, या वो आपके किंक से आ रहा है, तो एक होता है कि आप ठीक है यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एंड ट्राइंग टू रिवाइव योर सेक्स लाइफ, ऑब्वियसली इफ यू हैविंग सेक्स विद समबडी अगेन एंड अगेन इन अ मोनोगैमस रिलेशनशिप तो उसको स्पाइस अप करना जरूरी है, पर एक है कि शादी नहीं हुई है अभी 3-4 महीने हुए हैं, यू नॉट इवन हैड सेक्स मी 15 times एंड यू वॉन्ट समथिंग एक्सटर्नल टू कीप ऑन अराउजिंग यू। आई हैव सो मेनी गाइज कमिंग टू द सेंटर क्लिनिक हु आर मैरिड एंड हु प्रेफर टू मास्टरबेट रदर देन हैव सेक्स विद देयर वाइव्स, मतलब यस, सो दैट्स ट्रू, सो दैट्स वेरी कॉमन, सो तो दीज आर कपल्स जिनमें ये होगा कि शादी नहीं हुई है, सेक्स 2 या 3 बार हुआ है, एंड नाउ दिस दे कम आफ्टर 6 months एंड द वाइफ सेज कि इज़ अ डिजायर लिबिडो नहीं है इनका, ठीक है, एंड देन यू आस्क द गाय प्राइवेट, तो हिल से मैं भी मास्टरबेट कर रहा हूँ, सो ही इज नॉट गेटिंग अराउज बाई दिस वुमन, दिस रियल वुमन, ही बिकॉज हिज आइडिया ऑफ द वुमन इज मे बी नॉन रेशियल, अब शादी तो रेस में ही होगी ना, ठीक है, नाउ यू वॉन्ट अ वाइट ब्लॉन्ड और यू वॉन्ट अ एबनी और यू वॉन्ट अ फीमेल, कहाँ से मिलेगा आपको, यू आर टू यू आर अ बनिया यूल मैरिया बनिया, यूर पंजाबी यूल मैरिया पंजाबी, ठीक है, आपको फिजिकल ट्रेट्स मैच नहीं हो रहे हैं, ठीक है, आपको अराउजल नहीं हो रहा है, तो दीज आर देन दैट्स वाई आई फील
की रियल प्रॉब्लम्स है,
रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है पॉन की, मुझे लगता है कि पॉन शुड बी रेगुलेटेड।
कि जो पार्टनर्स हैं जिनकी शादी हो गई आफ्टर मैरिज, डू यू थिंक स्टिल अ मेल पार्टनर और अ वुमेन फीमेल पार्टनर शुड कीप वॉचिंग पॉन, उन्हें देखते रहना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए?
देखो इसके लिए ना आई गॉट अ लॉट ऑफ बैकलैश ऑलरेडी, आई फील कि यू इफ यू आर मैरिड यू शुड नॉट वॉच पॉन, ठीक है, एंड इफ यू वॉन्ट टू वॉच पॉन देन इट शुड बी अ ग्रुप एक्टिविटी और कम्बाइंड एक्टिविटी, मतलब उसमें अगर आप उसको यूज कर रहे हो टू स्पाइस अप योर मैरिज अलग बात है, पर अगर आप अपनी पार्टनर को पॉन से रिप्लेस कर रहे हो तो वो आई थिंक एक हेल्दी रिलेशनशिप बनेगा ही नहीं, ठीक है,
तो नहीं करना चाहिए,
नहीं करना चाहिए। मल्टीपल टाइम्स क्या होगा कि द वाइफ वॉन्ट्स टू हैव सेक्स, द हस्बैंड ऑलरेडी मास्टरबेटेड दैट डे, उसका मन नहीं करेगा करने का, वो बहाना बनाएगा कुछ ना कुछ, थका हुआ ऑफिस से, ये जो भी एक्स वाई जेड है, सो कहीं ना कहीं तो ही इज नॉट चीटिंग इन रियल लाइफ बट ही इज चीटिंग हर आउट ऑफ दैट एपिसोड ऑफ सेक्स, राइट।
एक चीज आपने बोली कि इमोशनली वो चीटिंग ही कर रहा है, तो डू यू थिंक दैट एक रिलेशनशिप में अगर पार्टनर है शादीशुदा है और अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों अलग से पॉर्न देख रहे हैं तो पॉर्न वॉचिंग पॉर्न इज सम सॉर्ट ऑफ चीटिंग?
आई थिंक इट इज चीटिंग,
वेरी हैवी, ओके, बट देयर इज अ स्टडी, ओके, एंड आई वांट टू काउंटर ऑन दिस कि एक स्टडी है कि कपल जो साथ में पॉन देखते हैं वो ज्यादा कमिटेड होते हैं, डू यू थिंक सो?
साथ में देख लो ना क्या दिक्कत है, साथ में देखते नहीं है, हस्बैंड भी साथ में देखेगा ही नहीं,
बट देयर इज अ स्टडी कि जो साथ में देखते हैं वो ज्यादा कमिटेड होते हैं, तो साथ में देखने में प्रॉब्लम नहीं है,
साथ में वो कपल्स पॉन देखते हैं जो सेक्सुअली ठीक है, जहां वो कॉन्फिडेंस है, जहां वो वाइफ को पता है कि द हस्बैंड इज एबल टू परफॉर्म, हस्बैंड को पता है माय वाइफ इज ओनली माइन एंड वी आर सिक्योर, वो रिलेशनशिप में सिक्योर है, सिक्योरिटी के ऊपर ही आप लोग पॉन साथ में देखते हो ना, जो हस्बैंड सिक्योर नहीं है, जिस हस्बैंड को पता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पा रहा, वो पॉइंट के लिए देखेगा, क्योंकि उसको दो इनसिक्योरिटीज है। पहला, ही डजंट वांट टू टेल हिज वाइफ कि मैं तेरी बजाय इसको कर रहा हूँ, तो एक तो वो हाइड कर रहा है, दूसरा डजंट वांट हिज वाइफ टू नो कि इतना अच्छा सेक्स हो भी सकता है।
अब टू मेनी क्वेश्चंस ऑन दिस, पर मैंने बहुत सारे नोट्स बना लिए जब तक आप इससे बातें बोल रहे थे। उसमें पहली सी चीज आपने बोली कि जो ज्यादा पॉर्न देखते हैं वो फिर अपनी एक पार्टनर से वो सेटिस्फाई नहीं हो पाते, राइट? और उनको कॉन्स्टेंट अर्ज होती है, वो बार बार चाहिए होता है कि यार मैं किसी दूसरे पार्टनर के पास जाऊँ, फिर तीसरे पार्टनर के पास जाऊँ, बिकॉज उनका एक आइडिया ऑफ सेक्स इज वेरी डिफरेंट। सो और ये बहुत सारी प्रॉब्लम है। इनफैक्ट बहुत छोटे छोटे गाँव हैं, शहर हैं, फगेट, मतलब मैंने बहुत सारी फैमिलीज देखी फर्स्ट हैंड, जहाँ पर ऐसा बोला जाता है कि अरे ये तो लड़का है तो चीट करेगा ही, ये तो जाएगा ही, इसको तो अर्ज होती है, लड़के थोड़ी रोक पाते हैं अपनी अर्जेस, राइट? एंड योर साइंटिफिकली और ऑल्सो एक्सप्लेनिंग सर्टन थिंग्स कि इसकी वजह से होता है, मे बी बहुत ज़्यादा कॉन्स्टेंट एक्सपोजर होता है थ्रू मीडिया और थ्रू पब्लिक लाइफ और थ्रू पॉन, उसकी वजह से होता है। डू यू थिंक कि मैन अपनी अर्जेस रोक सकते हैं?
रोकना तो पड़ेगा ही
तो कैसे रोक सकते हैं? गिव मी 5 points हाउ अ मैन कैन स्टॉप हिज अर्जेस।
डू डॉग्स रेप अदर डॉग्स? नहीं, डॉग्स गेट अर्जेस एंड दे गेट कंसेंट फ्रॉम द फीमेल डॉग एंड दे हैव सेक्स। इफ देयर इज एग्रेसिव डॉग और द अल्फा मेल इन द, तो बाकी सबको नहीं मिलेगा, तो बाकी सब छोड़ना पड़ेगा। तो एवरी सोसाइटी वी कैन नॉट हैव फ्री सेक्स ना, इट हैज टू बी कंसेंशुअल। तो आई एम वेरी स्ट्रांग विद कंसेंट, कंसेंट होना चाहिए।
इवन आफ्टर हैविंग कंसेंट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस थिंग कि बहुत सारे लोग एक रिलेशनशिप में होते हैं बट वो सेक्सुअल अपने पार्टनर के साथ होते हैं, और जैसे आपने बोला उसकी पार्टनर ही उसे लाइक द पार्टनर इज नॉट एबल टू सेटिस्फाई, कुछ भी रीजन हो सकता है, पॉर्न हो सकता है, मास्टरबेशन हो सकता है, बोर्डम हो सकता है, एक्स वाई जी, तो इसीलिए वो जो मैन है ही इज गोइंग आउटसाइड एंड ट्राइंग टू फाइंड इट फ्रॉम समवेयर एल्स। हाउ कैन अ मैन स्टॉप हिज अर्जेस? इज इट पॉसिबल फॉर अ मैन टू स्टॉप अर्जेस? दैट्स फर्स्ट।
नहीं तो सी, यू हैव टू स्टॉप योर अर्ज फॉर एवरीथिंग ना, इट्स नॉट ओनली अबाउट सेक्स। अब कल को आपको पैसा चाहिए था, जाकर बैंक लूट लोगे।
एग्जैक्टली,
ठीक है, वो तो अपनी अर्ज स्टॉप कर ही रहे हो ना। वो अर्ज क्यों स्टॉप कर रहे हो? बिकॉज देयर इज अ स्ट्रॉन्ग क्रिमिनल रेपरकशन टू डू दिस एक्ट्स। तो सिमिलरली अगर आपका स्ट्रॉन्ग रेपरकशन है, फैमिली लॉस हो जाएगी, बीवी छोड़ जाएगी, डाइवोर्स हो जाएगा, पब्लिक में बेइज्जती होगी, तो लोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हर अर्ज को कंट्रोल करना तो पड़ेगा, बिकॉज दिस वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी वेयर देर आर रूल्स एंड रेगुलेशन दैट नीड टू बी फॉलोड। ठीक है,
आर देर वेज टू डू इट? डू पीपल शुड डू सर्टन थिंग्स टू स्टॉप अर्जेस? मे बी लेट्स से अ सिंपल टिप कैन बी कि लड़कों को पॉर्न देखना बंद कर देना चाहिए, लड़कों को ये करना बंद कर देना चाहिए।
देयर इज एन आर्गुमेंट विच सेज कि हम लड़कों को अर्जेस है तो बाहर जाके बजाय मास्टरबेशन कर लो, कम से कम अर्जेस कंट्रोल तो हो रही है। ठीक है, बट अदर साइड ऑफ दिस, सी आई एम एलोपैथिक और डॉक्टर, आई एम अ सर्जन, बट आई स्ट्रांगली बिलीव इन द ब्रह्मचार्य कॉन्सेप्ट। ठीक है, देर आर वेज टू यू नो ट्राई टू कंट्रोल योर सेल्फ, लाइक एक्सरसाइजिंग। ठीक है, ट्राइंग टू रिमूव द पेंट अप एनर्जी इन एक्सरसाइजिंग, ट्राइंग टू डीफोकस। इफ यू आर कॉन्स्टेंटली बींग सर्वड पॉन ऑन अ प्लेटर एवरी डे, इफ यू कॉन्स्टेंटली बींग सर्वड टिटिलेटिंग मटीरियल ऑल द टाइम, सो यू ऑलवेज ट्राइंग टू रिमेन यू नो हाइपर सेक्शुअल। सो इफ यू आर एबल टू कंट्रोल द एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, और मतलब इफ आर एबल टू कंट्रोल दैट, तो उससे भी थोड़ा कंट्रोल रहता है। ठीक है, थर्ड इज योर मतलब ट्राइंग टू स्टॉप योर सेल्फ फ्रॉम मास्टरबेटिंग इज डिफिकल्ट, बट मेनी मैन आर एबल टू डू दैट। ठीक है, फोर्थ इज ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन रिलेशनशिप वेयर यू आर एबल टू हैव सेक्स, और वेर यू आर एबल टू यू नो स्टेबल मोनोगैम रिलेशनशिप, सो यू विल नोटिस कि यू आर एबल टू हैव बेटर सेक्स, राइट? बट वन थिंग आई एम वेरी श्योर कि भाई शादी के बाद ही, मतलब पहले प्री मैरिटल और पोस्ट मैरिटल सेक्स, अगेन आई डोंट हैव अ व्यू ऑन इट, बट इफ यू आर नॉट हैविंग सेक्स एंड यू आर यंग एंड यू हैव हाई अर्जेस, तो मास्टरबेशन खराब है भी, तो देर आर सर्टन मतलब वेज, लाइक यू कैन रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी मास्टरबेशन, वन इज दैट। सेकेंड इज यू कैन ट्राई टू मे बी स्टिम्युलेट मास्टरबेशन टू अ डिग्री, लाइक आपने नंबर्स कम कर दिए, इंस्टेड ऑफ मास्टरबेटिंग 3 or 4 times अ डे, यू आर रिड्यूसिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ मास्टरबेशन, एंड यू कैन ट्राई टू मे बी इम्प्रूव द वे यू मास्टरबेट, लाइक इंस्टेड ऑफ सीइंग पॉर्न मे बी ट्राई टू मास्टरबेट बाय इमेजिनेशन, सो दैट कीप्स योर स्टिम्युलेशन बेटर। ठीक है, यूज अ वार्म लुब्रिकेंट इंस्टेड ऑफ यू नो जस्ट कोल्ड मास्टरबेशन, टेक योर टाइम टू मास्टरबेट, ट्राई टू इम्प्रूव योर एजिंग टेक्निक। सो देर आर थिंग्स दैट आर डिस्क्राइब्ड इन द नोफैप कम्युनिटी ऑल्सो, दैट इफ यू रियली नीड टू मास्टरबेट टू कंट्रोल योर अर्जेस, सो मे बी यू कैन यूज अ फ्यू ट्रिक्स लाइक दिस, बट आई रियली डोंट हैव एन आंसर, बिकॉज इंडियन सोसाइटी में सेक्स लेट स्टार्ट होता है, अर्जेस अर्ली स्टार्ट होती है, एक बीच का गैप, सो आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दैट। बट वट आई टेल माई पेशेंट्स इज वट आई टेल माई men is that, you know, if you can quit porn and you can stop masturbation and you can try to focus on exercise and reduce the amount of sexual titillation, maybe things will get better.
So simple tips कि किसी को भी अपनी अर्जेस कंट्रोल करनी है इजियर इज फर्स्ट इज
पहले एक्सरसाइज
डेली एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दो तो तुम्हारी जो एनर्जी है वहां रिलीज होने लग जाएगी दैट्स अ हाई क्वालिटी वैल्यू. सेकंड इज तुम्हारा मीडिया कंजम्पशन है वो बेटर कर दो तो मीडिया कंजम्पशन अपना सेक्सुअलाइज कंटेंट मत करो बी इट पॉर्न बी इट
स्टार्ट स्किपिंग इंस्टाग्राम पोस्ट्स एंड स्लोली यू विल स्टार्ट गेटिंग बेटर कंटेंट इफ यू गोइंग टू कांस्टेंटली सी द सेम पोस्ट सो इंस्टाग्राम कीप फीडिंग यू राइट. थर्ड इज
start finding ways to put in effort in
your relationship. No, like Ankit Bayanpuriya hai. So he does this Hanuman Chalisa in the night. So maybe not Hanuman Chalisa, but you can try to build a better version of yourself. So maybe read a book.
Have a disciplined routine.
Disciplined routine and aap raat ko koi achhi book padh ke so sakte ho. Hota kya hai ki if you're going to see shit content at night and then sleep to aapke subconscious mein wo ghumta rehta hai. Non NREM sleep mein jo hai, matlab dreams kya hoti hai? Dreams are basically the last few things that you were engaged with. So if you engage into something self-improvement like reading a book or maybe improving your career or maybe doing some kind of
or improving thing, your relationship with your partner
though, that is what is going to run into your head in the night, so you won't maybe feel like masturbating in the morning. And ek hota hai, you make a trigger. So if you really feel like masturbation, you should have a trigger. So trigger mein hota hai, for example, you feel like masturbation, you can maybe call a friend, mutual karte hai. So you have masturbation groups, like, you know, guys. So we get them made in a clinic. So 5-6 boys ko connect kara diya.
Really?
So if somebody wants to do it, he just calls the other guy.
How weird
so
is that?
So they just stop it. It's like how you motivate for exercise or you motivate for leaving alcohol.
Isn't it weird like 5 guys calling together and we like saath mein masturbate karte hain? That is, so this, ye normal hai?
Bahut log karte hai. So a lot of people form groups to do it, to stop it. They feel motivated ki achha mere dost bhi nahi kar rahe to main bhi nahi karunga.
That's a good motivation ki everybody is stopped together.
Yes. And they have a trigger also. Suppose I feel a real urge, I'll have a cold shower, yeah, I'll go and do 10 sit-ups until the urge goes away. Okay, that can help, right? And if it really is not manageable, then we tell them to fix a day on a calendar. Ki Sunday is the cheat day. So, okay, so Sunday you can maybe do it. So, these are only ways by which you can try to control. Then there are medications also.
Okay, medication. So,
medications, like there are antidepressants, like SSRIs and all that can really help you reduce the urge. So some men who are really, 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 you know, want to quit and they're not able to do it, so we prescribe them some SSRIs. It really helps them calm them down. So they don't just get lesser urges.
But agar log antidepressants lene lag jate hain ya SSRIs lene lag jate hain, to long term uska koi harm hota hai?
So antidepressant mein doses hai. Theek hai, to serotonin jo hai, basically serotonin reduces. Is an inhibitor. So when you give an SSRI, serotonin levels rise.
Calmness aa jati hai.
So you start getting less urges. So then if somebody is really, really not able to control, then we can start SSRIs. Help hota hai uske andar.
Tell me, menopause ke baad sex ki urge khatam ho jati hai?
So menopause ke baad sexual urge kam ho jati hai because the hormones that the female is producing become less.
Okay.
Second is menopause ke baad the vagina kind of, you know, dries up.
Okay.
So there is no mucus, there is no liquid production. So sex can sometimes become painful, right? Plus, post-menopausal societal expectation bhi nahi hai ki bhai koi woman sexually active rahe. Bahut sari Indian women, matlab sexy desire chhod deti hai. They go into a little bit of bhakti or religious, theek hai. To us type se, but I think jaise West mein hai, to West mein there is, after woman goes to menopause, they go to HRT, hormone replacement. And then they're able to get back almost the kind of sex drive that they had. So, वहाँ तो बहुत common है.
क्या होता है HRT?
HRT is hormone replacement therapy.
India में होती है?
India में भी होती है.
Okay.
But less women access it.
क्यों?
Because HRT के कुछ side effects हैं. जैसे HRT can predispose to more cancers. ठीक है, cervical cancer है या आपका breast cancer है या ovarian cancer है. तो इसलिए when you're giving hormones, you need more monitoring. ठीक है, plus HRT के अंदर इंजेक्टेबल भी आते हैं, ओरल भी आते हैं, यू हैव एप्लीकेंट्स ऑल्सो. तो हर लेडी का अपना डिजायरस लेवल के ऊपर होता है. ठीक है, प्लस इंडिया में अगेन टैबू है, मतलब सेक्सुअल एक्सपेक्टेशन रखना. ठीक है, तो हस्बैंड एग्री कर रहे हैं, नहीं कर रहा है, डिस्कशन क्या है. ऊपर अगर किसी लेडी को 50 के बाद भी अपने आप को हेल्दी रखना है और उसको लगता है कि माई हस्बैंड वॉन्ट्स इट, तो मेनी टाइम्स वी गेट हस्बैंड्स हुआ 60-55 जैसे कि हम तो सेक्स के लिए रेडी है, हमें करना है, पर हमारी वाइफ नहीं एग्री करती है या शी इज नॉट कंफर्टेबल. तो अगर आपको लगता है कि सेक्स हेल्दी है और आपको करना है, तो यू शुड गो मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ वुमन शुड टेल द गायनेकोलॉजिस्ट कि मेरे को सेक्सुअली एक्टिव रहना है, व्हाट कैन आई डू एंड देयर ऑप्शंस.
एंड यू नो हर हम लोग बहुत बार सुनते हैं मेनोपॉज के बारे में, बट समथिंग दैट लोग बात नहीं करते दैट इज मैन ओपॉज, राइट, दैट इज एंड्रोपॉज. तो क्या होता है मैन ओपॉज, क्या होता है एंड्रोपॉज, क्या होता है, कैन यू एक्सप्लेन?
तो ये टर्म्स अभी एवोल्यूशन में है, ये टर्म्स फिक्स नहीं हुए हैं, बट अभी जो करंट टर्म है वो एडम है. एडम इज बेसिकली एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन द एजिंग मेल.
मतलब क्या होता है इसका?
इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आदमी ओल्ड हो रहा है तो उसके टेस्टोस्टेरोन लेवल डिक्लाइन करता है और बॉडी में और भी जो हार्मोन्स है, जो मेल हार्मोन्स है, टेस्टोस्टेरोन और उसके प्रोडक्ट्स, दे स्टार्ट फॉलिंग. तो उसके सिम्टम दिखते हैं जैसे अर्ली एजिंग, बोन लॉस, मसल लॉस, लैक ऑफ एपिटाइट, ठीक है, देन योर सेक्सुअल रिस्पॉन्स स्टार्ट फॉलिंग, इरेक्टाइल डिसफंक्शन स्टार्ट कमिंग इन, प्रोस्टेट ग्रोथ हो जाती है, हार्ट हेल्थ ड्रॉप करती है, हाइपरटेंशन बन जाता है. सो दे फाउंड दैट अगर आप इन मेन के अंदर टेस्टोस्टेरोन को सप्लीमेंट कर दो टाइमली, सो ऑल ऑफ दीज नेगेटिव इफेक्ट्स डोंट हैपन. टेस्टोस्टेरोन इज कंसिडर्ड अ प्रिजर्विंग फोर्स फॉर मैन. तो जो आदमी टीआरटी, तो टीआरटी इज वेरी कॉमन. तो आप देखोगे जैसे थाईलैंड है और यू गो टू, तो थाईलैंड में यू हैव टीआरटी क्लिनिक्स एवरीवेयर.
मतलब टीआरटी क्या होता है?
टीआरटी और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट.
अच्छा.
एक होता है टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंटेशन जो बॉडी बिल्डर्स करते हैं, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन नॉर्मल है पर वो और ले रहे हैं अपने आप को बल्कअप करने के लिए. एक होता है कि आप नॉर्मल हो और आपका टेस्टोस्टेरोन आपके कम हो गया, तो नाउ यू नीड 500 फॉर परफॉर्मेंस और आपका टेस्टोस्टेरोन 200 हो गया, बिकॉज योर गोनाइड्स आर नॉट प्रोड्यूसिंग, टेस्ट इज नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ बिकॉज ऑफ एज. सो नाउ जो गैप है 300 का वो फिल करना है, तो वी आर रिप्लेसिंग इट, सो कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट. तो रिप्लेसमेंट में टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मुलेशन होते हैं, जिनको इंजेक्शंस है, टैबलेट्स है, जेल्स है, वी गिव द पेशेंट, वी मॉनिटर इट. तो हमारा टारगेट ये नहीं है कि पेशेंट को अनवर्ल्ड बनना है, हमारा टारगेट ये है कि पेशेंट की परफॉर्मेंस नॉर्मल हो जाए, बोन ठीक हो जाए. जैसे पेशेंट आते हैं मसल्स कम हो गया है, बॉडी फेस पिचक गया है, उनके कंप्लेंट्स क्लासिकली होते हैं कि सिर्फ रौनक खत्म हो गई है फेस से, ठीक है, फेस पिचक गया है, गाल सूख गया है, वजन नहीं बढ़ता है, खाना खाते लगता नहीं है, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म दैट मच, इरेक्शन नहीं आ रहा है, डिजायर नहीं होती है. तो व्हेन वी गिव टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट टू देम दे इंप्रूव, ठीक है, दे स्टार्ट लुकिंग लाइक मैन अगेन, ठीक है. एंड टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट इज ऑल्सो प्रोवन, अब तो नई स्टडी आई है रिसेंटली विच सेज इट प्रोलॉन्ग्स लाइफ,
बढ़ाता है.
यस, बिकॉज इफ योर टेस्टोस्टेरोन इज ओके, आपको अल्जाइमर नहीं होगा, मेमोरी लॉस नहीं होगा, डायबिटीज कंट्रोल में रहेगी. सो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट इज नाउ वेरी कॉमन इन द यूएस एंड द वेस्ट, एंड इवन बिकॉज बहुत महंगा है तो लोग थाईलैंड में कराते हैं आके, बट इंडिया में भी धीरे धीरे बढ़ रहा है. तो मैन नॉट कमिंग फॉर टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट.
तो टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट कौन सी एज में कराते हैं यूजुअली लोग?
सो कोई एज नहीं है डिफाइंड. सो जब भी आप का टेस्टोस्टेरोन बॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रही एक लेवल तक, तब हम कर सकते हैं चेंज. पहले 50 ईयर्स के बाद होता था, अब 40s में भी लोगों के टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप हो रहे हैं. तो अगर तो लोगों को लगता है ना कि कई बार कि टेस्टोस्टेरोन ले लेंगे तो हमारा बॉडी बनाना बंद कर देगा. बॉडी बनाना बंद कर दिया है, बॉडी नहीं बना रही है, तभी प्रॉब्लम आ रही है. तो आप नेचुरल के चक्कर में शिलाजीत खाते रहोगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है. तो नेचुरल तरीके हैं टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के. तो नेचुरल तरीकों में 5 स्टेप्स है टेस्टोस्टेरोन के. अच्छी डाइट, डाइट के अंदर आपको गुड फैट्स, वो टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल से बनता है तो गुड फैट्स चाहिए आपको, तो यू टेक गुड फैट्स नो डाइट. आप अच्छी नींद लो, बिकॉज इफ यू स्लीप देन ओनली योर पिट्यूटरी प्रोड्यूसेस गुड स्लीप. यू नीड एक्सरसाइज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपको रनिंग से टेस्टोस्टेरोन नहीं बढ़ेगा. रनर्स में क्लासिकल टेस्टोस्टेरोन कम होता है, लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स होते हैं, तो यू नीड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आपको मसल ट्रेनिंग करनी है. तो कई बार ना लोग ये कमेंट करते हैं
टेस्टोस्टेरोन कम होता है,
फॉल करता है लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स में. व्हेन पीपल रन मैराथॉन्स, अल्ट्रा मैराथॉन, साइक्लिस्ट में भी टेस्टोस्टेरोन ड्रॉप कर जाता है, बिकॉज व्हेन यू डूइंग टू मच कार्डियो तो दैट इज अगेन एंटी टेस्टोस्टेरोन. तो इसलिए लॉन्ग डिस्टेंस रनर्स के अंदर दे हैव पीरियड्स ऑफ हाई रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है. एच आई आई टी टेस्टोस्टेरोन बढ़ाती है, बट लॉन्ग एक्टिविटी ऑफ रनिंग में टेस्टोस्टेरोन कम होगा, ठीक है. कई बार पेशेंट्स कहते हैं कि डॉक्टर साहब फिटनेस होनी चाहिए, फिटनेस. बात फिटनेस की नहीं हो रही है, बात हो रही है कि एक नॉर्मल अंकल जी है 45 साल के जो जिम नहीं जा सकते, ठीक है, जो नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, उनको क्या करना है. तो उनको अपनी डाइट में थोड़े हेल्दी फैट्स डालने हैं, उनको अपनी एक्सरसाइज में, योगा नहीं से कुछ नहीं होने वाला, अलोम विलोम कुछ नहीं होने वाला, ठीक है. रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, एंड दैट डज नॉट मीन कि आपको वेट्स उठा के जिम जाना है. सिंपल थिंग्स लाइक पुशअप्स, पुलअप्स, स्क्वाट्स, ठीक है, ये भी इनफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए.
टाइमली रनिंग,
इंटरवल, खड़े होकर इंटरवल ट्रेनिंग कर लो, वेट लॉस नहीं करना है, मसल ट्रेन, मसल को रेजिस्टेंस देना है,
ठीक है,
ठीक है. एंड
डाइट तरीके यू सेड कि फर्स्ट वाज डाइट, सेकंड वाज रेजिस्टेंस ट्रेनिंग,
स्लीप, ठीक है, एंड देन वी हैव मेडिकेशंस दैट कैन हेल्प. तो मेडिकेशन विटामिन डी इज वेरी हेल्पफुल, अगर विटामिन डी लेवल अच्छे है आपके, टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाएगा, ठीक है, देन वी गिव एलार्जिनिन टू आर पेशेंट्स, तो एलार्जिनिन बहुत हेल्पफुल होता है टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने के लिए, एंड देन ओमेगा फैटी एसिड्स, ठीक है, ये तीन सप्लीमेंट्स तो बेसिकली लेने चाहिए जो आपको हेल्प करेगा, एंड फिफ्थ इंजेक्टेबल्स, ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल इससे आपका 300 से 400 आ गया, अब 100 का गैप है, 150 का गैप है, तो हमारे इंजेक्टेबल्स होते हैं, तो वी हैव मेनी इंजेक्टेबल्स, हमारे पास HCG भी होता है, हमारे पास टेस्टोस्टेरोन सप्लीमेंट्स भी होते हैं, तो जो भी उसको रिक्वायर्ड होगा वो यूज़ करेंगे, बट इनिशियल हम इससे स्टार्ट करते हैं, तो नॉर्मली अगर हम डाइट एक्सरसाइज सप्लीमेंट्स और ये करते हैं तो नॉर्मली 3 से 4 महीने में टेस्टोस्टेरोन काफ़ी बढ़ जाता है।
ओके, एल आर्जिनाइन बहुत लोग जिम जाते हैं जो वो लोग लेते हैं, सेफ सप्लीमेंट है?
सेफ सप्लीमेंट है, अच्छा सप्लीमेंट है, एलार्जिनिन के बहुत सारे बेनिफिट्स है, पर जो मेजर चार बेनिफिट्स एलार्जिनिन के है, वो पहला है कि एलार्जिनिन हमारी कार्डियक हेल्थ को अच्छा रखता है, वेसल अच्छे रहेंगे, बीपी नहीं बढ़ेगा, ठीक है, पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लिटिल बिट ऑफ ब्लड प्रेशर, उनको दवाइयाँ स्टार्ट नहीं करनी, उसमें ब्लड प्रेशर को डाउन करता है, हमारी जो वैस्कुलर हेल्थ है, जो भी बॉडी में आर्टरीज वेन्स है उनको क्लियर रखता है, ठीक है, देन एलार्जिनिन का पिनाइल ब्लड फ्लो में बहुत रोल है, तो एलार्जिनिन जो है वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन जहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आई है, अभी बस स्टार्ट हुआ है लगता है, थोड़ा सा ढीलापन आया है, वहाँ पर एलार्जिनिन आपको हेल्प कर सकता है, ठीक है, एलार्जिनिन इज ऑल्सो वेरी गुड प्रमोटर ऑफ मेटाबॉलिज्म, तो टेस्टोस्टेरोन में हेल्प करता है, वुमेन में बहुत हेल्प है एलार्जिनिन की, एलार्जिनिन वुमेन में एग प्रोडक्शन में, यूट्रस की जो कैविटी बनती है बच्चे के लिए उसमें, तो एलार्जिनिन इज एक्चुअली अ गुड सप्लीमेंट, प्रॉब्लम एलार्जिनिन और एनी सप्लीमेंट इज आज के दिन फेक, ठीक है, आप एलार्जिन मंगवा रहे हो सोच के एलार्जिनिन है, पर वो एलार्जिनिन को क्वालिटी अच्छी नहीं है, या एलार्जिनिन को प्रॉपरली अब्जॉर्ब नहीं हो रहा, या आप जो डोज ले रहे हो वो ठीक नहीं है, या वो एक्सपायर्ड एलार्जिनिन है, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या है कि जैसे प्रोटीन पाउडर में इशू ही है, आज के दिन किस सप्लीमेंट पे आप बिलीव करो
वो सबसे
नहीं पता, ठीक है, तो जैसे हमारे सेंटर में वी गेट मेडिकल, तो एलार्जिन दो तरीके से आता है, एक आता है सप्लीमेंट में जो फूड है जिसको गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करती, जैसे FSSAI के अंदर होता है, उसमें जैसे फूड सप्लीमेंट, तो वो खाने की तरह है, उसके अंदर कोई क्वालिटी चेक नहीं होता, कुछ नहीं होता, वो सिर्फ एक खाना है, तो वो तो आप उसमें है भी नहीं, कुछ नहीं पता, एक एलार्जिन आता है जो मेडिकल है, जिसके जो ड्रग कंट्रोल अथॉरिटी रेगुलेट करती है, जो लाइसेंस से बनता है, तो वेन एवर यू बाय एलार्जिनिन, यू बाय अ ड्रग क्वालिटी एलार्जिनिन, तो उससे आपको पता है कि आप जो ले रहे हो वो ठीक है, वो दवाई है, वो कुछ जैसे सन है, सिप्ला है, बड़ी कंपनियां हैं ये बना रही है, तो इनके ऊपर क्वालिटी कंट्रोल है, इनके अंदर बैचेस है, इनके अंदर एक्सपायरी डेट है, इनके अंदर
बहुत सारे चेक्स
एंड बैलेंस है, तो वो एलार्जिनिन काम करेगा, वो दवाई है, तो प्रॉब्लम के आज के दिन फूड वाले रूट से बहुत सारे लोग अपने सप्लीमेंट्स को
बेच रहे हैं। ओके, आई हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस, बट उसके मैं एक स्टैट बताता हूँ, रिसेंटली मैंने पढ़ा था कि मोर इंडिया में अभी फूड ड्रग अथॉरिटी ने शायद इन्होंने इंडिया में सारे सैंपल जो रहते प्रोटीन पाउडर्स के 1100 के आसपास, और उन 1100 में मोर देन 90% में जो प्रोटीन कंटेंट लिखा था वो था ही नहीं, मोर देन 90%, तो मतलब मोर देन 90% मार्केट में जो प्रोटीन है वो फालतू है, फेक है, उनमें जो लिखा हुआ है वो प्रॉमिस नहीं है, राइट? तो और जो सबसे ऊपर आया था, आई एम नॉट प्रमोटिंग दिस ब्रांड, बट जो सबसे ज्यादा कि सबसे ज्यादा एक्यूरेट था वो ऑन पे था,
ऑप्टिमम न्यूट्रिशन वालों का,
हाँ, लेकिन फिर दूसरा स्टैट था कि ऑन के इंडिया में जितने डुप्लीकेट्स मिलते हैं वो किसी के भी नहीं मिलते।
तो ये जो ये प्रोटीन सप्लीमेंट्स है ना, ये एक बहुत बड़ा स्कैम है, ठीक है, आपको अच्छी क्वालिटी का प्रोटीन का कोई गारंटी नहीं है, कि आपको जो ये ओएन के डब्बे है, कई बार ना कबाड़ी को भेज देते हैं, वो कबाड़ी इसको फिर से भर के सील लगा के भेज देते हैं, ठीक है, सो
जो ओएन ओरिजिनल जो आता है दैट्स रियली
दैट्स वेरी गुड, बिकॉज वो वे प्रोटीन है, वे प्रोटीन इज बेसिकली हाई क्वालिटी मिल्क प्रोटीन, खाली दो ही प्रोटीन है वर्ल्ड में जो एमिनो एसिड प्रोफाइल से कंप्लीट है, जिनको हम बोलते हैं कंप्लीट प्रोटीन, वो एक है मिल्क प्रोटीन और एक है एग प्रोटीन, ठीक है, उसके अलावा जितने प्रोटीन है सब प्रोटीन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप बात करो वेजिटेबल प्रोटीन की, दालों की और इनके अंदर अमीनो एसिड प्रोफाइल पूरा नहीं होता, ठीक है, सो इसमें आपको अमीनो एसिड को सप्लीमेंट करना पड़ता है, जैसे दाल में एक प्रोटीन कम है तो वो चावल से कंप्लीट किया, तो दीज प्रोटीन आर नॉट हाई क्वालिटी प्रोटीन, प्लस अगर आप पर ग्राम की बात करो प्रोटीन कंटेंट की, तो एग और मिल्क में बेटर है,
हाईएस्ट है,
तो या तो एग का प्रोटीन खाओगे या मिल्क का प्रोटीन लोगे, अब प्रॉब्लम क्या है, इफ यू टेक प्रोटीन इन लार्ज क्वांटिटीज तो के साथ में कार्ब्स भी जा रहे हैं और आपको फैट भी मिल रहा है, तो प्रोटीन पाउडर बेसिकली अब एक ही आप कंसंट्रेटेड प्रोटीन को, ताकि सारा उसमें सारा कार्ब निकाल दिया, फैट निकाल दिया, और आपको बिल्कुल प्योर प्रोटीन मिल रहा है, अब वो प्रोटीन आपने लिया, वो प्रोटीन जो है वो बॉडी में अब्जॉर्ब भी होना चाहिए, ठीक है, कई बार आप प्रोटीन तो ले रहे हो गिन के 100-125 ग्राम जो भी ले रहे हो, पर उसमें हो सकता है कि वो अब्जॉर्ब ही 20-25 ग्राम हो रहा हो, 75 ग्राम आपका निकल गया मॉर्निंग में, ठीक है, तो इज योर बॉडी एब्जॉर्बिंग प्रोटीन, तो वेरी कॉमनली क्या होता है ना, आई हैव सीन कि बंदे ने जिम स्टार्ट किया 2 दिन पहले और पहले प्रोटीन स्टार्ट कर लिया, आपकी बॉडी की मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ही नहीं है इतनी, ठीक है, यू डोंट 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट इज फॉर एथलीट्स, ठीक है, जो बॉडी टर्नओवर कर रहे हैं. तो बट टेकिंग प्रोटीन 1.5 ग्राम पर केजी एंड एक्सरसाइज इज नॉट राइट लेवल, तो यू डोंट रिक्वायर दैट. वो आपका विद फीसिस निकल जाएगा, वो कोई एब्जॉर्ब नहीं होने वाला. ये नहीं कि जो आपने खाया वो एब्जॉर्ब हो गई, ठीक है. तो प्रोटीन स्कैम में दो स्कैम्स है. एक तो पहला स्कैम है कि ये लोग मिल्क प्रोटीन के साथ में प्लांट प्रोटीन मिक्स करते हैं, सोयाबीन प्रोटीन, ठीक है. तो सोया प्रोटीन जो है पुअर अमीनो एसिड प्रोफाइल है, ठीक है. सेकेंड है सोयाबीन प्रोटीन में एस्ट्रोजन है, फीमेल हार्मोन जो बोलते हैं हम, तो वो आपके टेस्टोस्टेरोन को काउंटर करता है. तो सोया प्रोटीन की बिगेस्ट चेंज, जैसे अभी नेस्ले था वो बैन क्यों हुआ, नेस्ले का जो मिल्क प्रोटीन था बच्चों का जो फीडिंग प्रोटीन था सोयाबीन बेस्ड था, सो इट वॉज कॉजिंग ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट इन ग्रोइंग बॉयज. छोटे बॉयज को देते थे फीड एंड दैट वॉज सोया, तो दे यूज टू डेवलप ईस्ट्रोजेनिक साइड इफेक्ट, उनकी मेंटल डेवलपमेंट, मेल इम्प्रिंटिंग पुअर होती थी. सो फिर दे हैड अ बिग प्रॉब्लम, हुआ बीच में
रिसेंटली
हुआ था. तो काफी सारे लोग क्या करते हैं कि प्रोटीन तो आता है डब्बा पूरा, उसमें से कुछ निकाल के उसमें सोया मिक्स कर दिया, ठीक है. सेकेंड है कि कई बार ये वे प्रोटीन सस्ता मिल्क पाउडर होता है, तो वे प्रोटीन तो आइसोलेट है, उसमें क्या है प्योर प्रोटीन है, उसमें निकाल के मिल्क पाउडर मिला देते हैं. मिल्क पाउडर में क्या है कार्बोहाइड्रेट कंटेंट ज्यादा होता है,
शक्कर होता
है, तो यू एंड अप गेनिंग वेट, यू एंड अप मेसिंग अप योर शुगर साइकिल. तो इसलिए गेटिंग अ गुड क्वालिटी प्रोटीन इज इम्पोर्टेंट, ठीक है, ये बहुत जरूरी है.
सो दोनों पे आते हैं, पहले की एलआरजीनाइन की बात करें तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है,
ज्यादा क्वांटिटी में बीपी कम हो सकता है, तो समटाइम्स मैं फील डिजी.
बाकी कभी एलआरजीनाइन क्या मैं मेरी लाइफ टाइम तक ले सकता हूँ, 20 साल 25 साल?
कोई स्टडी नहीं है इसको लेके, बट लॉन्ग टर्म में सेफ है. बट आई डोंट थिंक एनी सप्लीमेंट शुड बी टेकन लाइफ टाइम. होता क्या ना, आफ्टर अ पॉइंट वंस योर बॉडी इज रिक्वायरमेंट इज कंप्लीट, बॉडी विल एनीवे स्टॉप एब्जॉर्बिंग इट. तो व्हाट आई रिकमेंड टू माय पेशेंट्स सेमी साइंटिफिक है कि यू शुड कीप चेंजिंग सप्लीमेंट्स. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने मल्टीविटामिन ले लिया 2 महीने, तो उसमें आप गैप ले लो, फिर 2 महीने बाद फिर से स्टार्ट कर लो एज यू सी द बेनिफिट्स ऑफ इट. बट जस्ट टेकिंग अ मल्टीविटामिन और अ कॉम्बिनेशन ऑफ और अ स्टैक फॉर एवर एंड एवर आई थिंक इज नॉट अ वेरी साइंटिफिक. कब तक लोगे, मतलब एक लिमिट तक ही ले सकते हो, कॉस्टली भी होता है, एंड देन एवरीबॉडी कांट अफोर्ड इट, एंड देन वो एक्चुअली एब्जॉर्ब हो भी रहा है या नहीं हो रहा है नहीं पता,
वो कुछ पता नहीं. तो हर 2-3 महीने में साइकिल चेंज करते हो कि 1 महीना गैप कर दिया,
गैप कर दिया, देखो रिजल्ट आपको आ रहा है नहीं आ रहा है, यू आर फीलिंग गुड और नॉट फीलिंग गुड. तो मैनी मैन आर वेरी सेंसिटिव टू एलार्जिनिन, मैंने देखा है, दे विल जैसे एलार्जिनिन बंद करते दे स्टार्ट फीलिंग डाउन. अब वो प्लेसिबो इफेक्ट है या वो साइकोलॉजिकल डेवलप डिपेंड हो गया उस पर, वी डोंट नो. सो दे कीप टेकिंग इट एंड देन डोंट इवन चेंज द ब्रांड, जस्ट कीप टेकिंग इट फॉर एवर. बट आई यूजली टेल माई पेशेंट्स कि 3-4 महीने लेने के बाद आप उसको बंद कर दो, लेट योर बॉडी डिटॉक्स ऑल्सो, बिकॉज वी डोंट नो द अदर इफेक्ट्स दैट इट मे बी हैविंग. जस्ट स्टॉप इट फॉर सम टाइम एंड देन वी विल स्टार्ट.
3 months लो डिटॉक्स, देन 3 months, देन डिटॉक्स, देन
3 months, तो उससे ठीक रहता है.
गॉट इट. मेन परफॉर्मेंस पे इतना प्रेशर क्यों होता है, मतलब हर जगह जोक्स बनते रहते हैं, हर कोई इसी बारे में बात कर रहा होता है, मेन परफॉर्मेंस की बात ही कर रहा था हर कोई. सो इतना ज्यादा प्रेशर, वाई डू यू थिंक कि पूरी सोसाइटी के ऊपर ऐसा लगता है कि एक ओलंपिक्स का टूर्नामेंट है जहां पे मेन को परफॉर्म करना ही पड़ेगा. अगर एक अ मैन इज गोइंग टू ऑन इफ अ मैन इज गोइंग ऑन अ बेड, वो अगर बेड पे जाता है तो उसके बाद अभी एक जंग है, उसको जीतनी है, उसके ऊपर इतना प्रेशर है टू मेक श्योर दैट ही परफॉर्म सो वेल दैट द वुमेन इज इम्प्रेस, एंड उस इतने प्रेशर के बाद भी मोस्ट मैन फेल टू डू दैट. तो वाई डू थिंक इतना प्रेशर क्यों है पहले, तो ये कहां से आया? डोंट यू थिंक लाइक दोनों पार्टनर्स की इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऐसा
इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी? मैं तो बिल्कुल मानता हूँ, आई काउंसिल माई मैन, बिकॉज आई एम अ मैन एंड आई एम प्रो मैन. तो आई बिलीव की ऑर्गेजम दोनों की जिम्मेवारी है.
एग्जैक्टली,
वुमन शुड ऑल्सो नो हाउ टू ऑर्गेजम ना, ठीक है. मैन की जिम्मेवारी नहीं है कि सारा का ऑर्गेजम उसको ही कराना है, द लेडी ऑल्सो शुड नो कि उसको ऑर्गेजम कैसे आना है, ठीक है. सेकेंड है कि रिजल्ट पे ध्यान देते ना हमेशा, भाई वो रिसीवर है, वो गिवर है, तो गिवर के ऊपर सारा मतलब कड़ा देते कि तूने करना है
बोझ तेरे पे.
पर आई थिंक बेटर सेक्स हैपेंस व्हेन यू बोथ आर इन योर जोन,
लॉस्ट
इन योर जोन, मतलब आपका जोन है कि मेरे को खुद को एंजॉय करना है, ठीक है, और आई एम डन, तो आई विल डू थिंग्स जो मुझे खुश करे. पर सामने वाला जो है, जो भी रिसीवर है, उसका होना चाहिए कि मैं अपने जोन में हूँ, आई हैव अ टूल एंड आई नीड टू फाइंड अ वे टू एंजॉय बिटवीन माई सेल्फ, तब तो सेक्स अच्छा हो पाएगा. पर अगर सेक्स इस तरह से हो रहा है कि नहीं भाई आई एम अ साइलेंट रिसीवर एंड सामने वाला हैज टू जस्ट परफॉर्म, तो वो कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं वाला.
व्हाट डू यू थिंक एवरेज ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए फॉर अ गुड सेक्स?
देयर इज नो एवरेज ड्यूरेशन, तो हर कपल अलग होता है, ठीक है. सो सम कपल्स,
बट ग्लोबली से एवरेज ड्यूरेशन होती क्या नॉर्मल?
सो टेक्स्ट बुक्स कहती है 2 या 3 मिनट अगर हो रहा है तो ठीक है,
पर मुझे 2 या 3 मिनट
सफिशिएंट है,
सफिशिएंट
है सेक्स के
सेक्सुअल इंटरकोर्स,
सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए। अगर आपका फोर प्ले अच्छा है, आपने 5-7 मिनट फोर प्ले कर लिया है और आप सेक्स कर लिया है, बट मुझे लगता है कि देर इज नो एवरेज ड्यूरेशन जिसमें कपल अपना सेक्सुअल अर्ज निकाल ले और दोनों दोनों पार्टनर सेटिस्फाई हो जाए, वो अच्छा टाइम है। तो देर मैनी वुमन हु नो हाउ टू कम ऑफ, हु नो हाउ टू कम, एंड दे नो कि उनको अपना किस पोजिशन में उनको कम करना है, उनको किस पार्ट्स को अपने स्टिमुलेट करना है, एंड देर एबल टू यूज देयर मैन टू देयर बेनिफिट। एंड देर मैनी मैन हु आर फोकस्ड ऑन देयर हार्डनेस इन द इरेक्शन। तो एक जो मिसकंसेप्शन है वो है कि भाई पेनिट्रेशन से ऑर्गेजम होगा, तो उसको गायनेकोलॉजिस्ट ने उल्टा घुमा दिया। गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडीज है वो बोलती है कि पेनिट्रेशन जरूरी नहीं है, ऐसा नहीं है, पेनिट्रेशन जरूरी है और 50% ऑफ वुमेन पेनिट्रेशन से ऑर्गेजम करती भी है, ठीक है, बट पेनिट्रेशन ही सब कुछ नहीं है, ठीक है, क्लिटरल स्टिमुलेशन जरूरी है। तो अगर क्लिटरल स्टिमुलेशन हो रहा है, चाहे वुमन ऑन टॉप पोजिशन से हो रहा हो, चाहे थ्रस्टिंग से हो रहा हो, और पार्टनर का अपना एक कंपेटेबिलिटी लेवल सेट है, तो एनी अमाउंट ऑफ टाइम इज गुड इनफ। तो ऐसे कपल्स आते हैं जो 5 मिनट कर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। ऐसे कपल्स भी आते हैं कि हस्बैंड कहता है 30 मिनट्स 40 मिनट्स भी हम इंटरकोर्स कर ले तो भी मेरी वाइफ को गैजम नहीं आता है। तो इवन दे आर यू नो इन अ लूप वेयर ही वो चाहते 40 मिनट को और बढ़ाओ। वी टेल देम कि 40 मिनट बहुत है, ठीक है, प्रॉब्लम इज कि यू आर नॉट हिटिंग द राइट बटन्स, आप उस पर वर्क करो, ठीक है, बट दैट इज वेयर द इन्फॉर्मेशन मिसमैच हैपन्स।
तो टाइम से कोई फर्क नहीं है,
बेसिक टाइम होना चाहिए, ठीक है। आइडियली अ मैन शुड डिस्चार्ज व्हेन ही इज रेडी टू डिस्चार्ज, ठीक है। जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि अगर आप इरेक्ट हो और आप इंटरकोर्स कर रहे हो तो आपका इंटरकोर्स टाइम अच्छा होना चाहिए, और जब आपको लगे कि नाउ
यू टाइम, मतलब क्या होता है,
यू शुड नॉट डिस्चार्ज इफ यू डोंट वांट टू डिस्चार्ज, ठीक है, इफ यू आर थ्रस्टिंग एंड देन यू काइंड ऑफ स्पीड अप एंड यू रीच द थ्रेशोल्ड एंड यू क्लाइमैक्स, तो वो बेस्ट है। पर आइडियल सिचुएशन सबकी नहीं होती है, तो मेनी मैन विल हैव प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। प्रीमेच्योर में क्या होता है, या तो वो दे विल डिस्चार्ज आउटसाइड, वो इंसर्शन का टाइम ही नहीं आता है, या इंसर्शन के बाद दे आर डिस्चार्जिंग टू क्विकली, बट नॉर्मली इफ यू आर लास्टिंग 5-7 मिनट्स तो ठीक है, बहुत है, सफिशियंट है।
तो फिर टेक्स्ट बुक बोलती है कि 2-3 मिनट,
टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन है कि 1 मिनट से ऊपर अगर कोई व्यक्ति याद लास्ट कर रहा है तो 1 मिनट के ऊपर नॉर्मल है, टेक्स्ट बुक बोलती है। पर मेरे हिसाब से कोई भी लेडी 1 मिनट में डिस्चार्ज नहीं हो सकती है, 1 मिनट बहुत कम है। मेरे को लगता है कि एटलीस्ट 5-7-8-9 मिनट होना चाहिए। अब हमारे दिमाग में 5-7 मिनट बहुत कम है, बट इफ यू एक्चुअली यू नो होल्ड अ प्लान।
जोक रिसेंटली मेरे को एक मिला एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज़ यू टॉक्ड अबाउट 5-7 मिनट्स राइट एंड आई थिंक विच मूवी वॉज दिस की जहाँ पे कौन सी मूवी थी यार नेटफ्लिक्स पे वेयर उनका एक छोटा सा क्लिप है रिलेशनशिप दिखा रहे हैं वेयर द गर्ल इज काउंटिंग 1, 2, 3, 4 और वो लाइक डिस्चार्ज कर देता है मैन लव स्टोरीज में करता है दैट्स व्हाई आई वाज लाइक कि ओके दैट तो वो अब नॉर्मल है 1, 2, 3, 4 seconds
बिल्कुल नहीं सेकंड्स तो अब नॉर्मल ही ऑब्वियसली
सो एनीथिंग अंडर अ मिनट और 2 मिनट्स इज अब नॉर्मल
लव स्टोरीज में प्रॉब्लम सिर्फ टाइमिंग की नहीं थी लव स्टोरीज में 3 प्रॉब्लम थी विकी कौशल को विकी कौशल को पहली प्रॉब्लम थी कि वो अवेयर ही नहीं था कि उसकी वाइफ सेटिस्फाई नहीं हो रही है मतलब उसके लिए वाइफ का प्लेजर जरूरी नहीं था तो बिगेस्ट मिस्टेक जो आदमी बंद करता है वो ये करता है कि उसको ये नहीं पता होता कि सामने वाले का कुछ हुआ या नहीं हुआ तो दे आर नॉट कम्युनिकेटिंग ठीक है बिगेस्ट प्रॉब्लम की कोशिश करता है वो डिस्चार्ज हुआ है वेरी हैप्पी हियर अ स्माइल ऑन हिज फेस एंड ही स्लीप्स और वो देख ही नहीं रहा है कि मेरे साथ मेरी वाइफ है उसको कुछ
उसको अवेयरनेस ही नहीं कि इसके लिए भी होता है कुछ
हाँ उसको था कि भाई सेक्स मतलब कि मेरे को डिस्चार्ज होना है बस तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी तो बिगेस्ट प्रॉब्लम में मैंने दिस की महात्मा को लगता है कि मेरा डिस्चार्ज जरूरी है सामने वाले का जो वाइफ है वो नॉन पार्टिसिपेंट है मतलब उसका है कि शी इज जस्ट देयर फॉर डिस्चार्जिंग मी तो दैट इज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ विकी कौशल नॉट टाइमिंग ठीक है सेकेंड प्रॉब्लम थी कि विकी कौशल ने कम्युनिकेट ही नहीं किया कभी भी ना आप देखो लास्ट में कियारा को बोलना पड़ा उसको मतलब कि ना कि भैया ये प्रॉब्लम है और ये आई एम नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट एंड थर्ड प्रॉब्लम आपको रियलाइज होगी उसमें कि इवन शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग कि ऑर्गेज्म होता कैसे उसको जो उसकी फ्रेंड थी नेहा उसने नेहा धूपिया ने उसने समझाया उसको कि ऑर्गेज्म क्या होता है एंड शी रियलाइज ऑर्गेज्म क्या होता है एंड देन शी टॉक टू हर हस्बैंड अबाउट इट एंड देन सोल्यूशन हुआ तो मोस्ट मैरिजेस में जहां पर हस्बैंड वाइफ दोनों वर्जिन्स है वहां पर हस्बैंड को नहीं पता होता कि नॉर्मल टाइमिंग क्या है वहां वाइफ को ही नहीं पता होता कि उसको ऑर्गेज्म आएगा कैसे ठीक है और कम्युनिकेशन जीरो होता है वो ऐसे करके कई साल निकल जाते हैं एंड जैसे बोला मैंने कई सालों बच्चे भी जाते हैं और फाइनली वाइफ जो है उसको स्पीकअप करना पड़ता है आफ्टर द फर्स्ट और सेकंड बाय चाइल्ड कि अब पहला हो गया 1 साल निकल गया दूसरा हो गया 1 साल निकल गया देन बोलना पड़ता है कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड और फिर वो हस्बैंड शॉक में चले जाता है वर्मा का कहता है कि बच्चे भी हो गए, अब क्या प्रॉब्लम है, तो मेरी वाइफ ने कभी कंप्लेंट ही नहीं करी. सो द फर्स्ट कंप्लेंट कम्स आफ्टर सेकंड चाइल्ड, फर्स्ट कंप्लेंट कम्स एट 5 ईयर्स ऑफ रिलेशनशिप. तो 5 साल तक तो आदमी को लगता है कि मैं सब कुछ ठीक है, हाँ इतना ही होता है, 5 सेकंड ही होता है, 10 सेकंड ही होता है, मेरी वाइफ ने कुछ बोला ही नहीं कभी कुछ, ठीक है. और एक उसमें एक और प्रॉब्लम थी, विकी कौशल वॉज नॉट डूइंग एनी फोर प्ले, ही वॉज जस्ट एंटरिंग एंड डिस्चार्जिंग, ही वॉज जस्ट एंटरिंग एंड डिस्चार्जिंग. उसने कभी कोशिश भी नहीं करेगी, वेमेन के टच पॉइंट्स होते हैं, वेमेन विल नेवर, वेमेन नीड टू बी अराउज, ठीक है. देखो सेक्सुअल रिस्पॉन्स में 5 पार्ट होते हैं. सबसे पहला पार्ट होता है डिजायर, डिजायर मतलब सेक्स की इच्छा. दूसरा होता है अराउजल, अराउजल मतलब कि मेरा सेक्स का मन है, क्या मैं इरेक्ट हो रहा हूँ, क्या मेरे अंदर वो अराउजल की फीलिंग्स आ रही है. थर्ड होता है इरेक्शन की, उसका पेनिस टाइट हो गया. फोर्थ होता है कि उसने इंटरकोर्स किया, जो एक उसके कंट्रोल में होना चाहिए कि वो डिस्चार्ज कब कर रहा है, वो 5 मिनट हो, 10 मिनट हो, जब हो सकता है कि इंटरकोर्स कर रहा है एंड हिज पार्टनर जस्ट वॉन्ट अनदर 30 सेकेंड्स और नहीं रोक पा रहा, तो वो भी प्रॉब्लम है, ठीक है. तो एंड फाइनल होता है ऑर्गेजम, कि व्हेन ही डिस्चार्जेस एंड ही गेट्स दैट इमेंस प्लेजर एंड देन ही, उसका होता है पोस्ट रिफ्रैक्टरी पीरियड, जिसके अंदर नाउ ही इज फीलिंग वेरी सेटिस्फाइड और इसको हो गया कि अब ठीक ऑर्गेजम हो गया. अब उस समय ये फर्क है पॉन में और सेक्स में, जो ये पोस्ट ऑर्गेजम का पीरियड होता है, जब डोपामिन सर्ज हुआ है, अब रिवॉर्ड, रिवॉर्ड क्या मिला, रिवॉर्ड मिला वाइफ का अप्रूवल, जो आप हक कर रहे हो, रिलेशनशिप को डेवलप कर रहे हो, इंटीमेसी बना रहे हो. इस समय ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, इस समय आपकी आपकी बॉन्डिंग होती है, इस समय आपको हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग होती है. अब वो पॉन में मिसिंग है, पॉन में डोपामिन सर्च तो हुआ आपका, पर आपको डोपामिन सर्च के बाद रिवॉर्ड कुछ नहीं मिला, बिकॉज देयर इज नो बॉन्डिंग, देयर इज नो इंटीमेट कनेक्शन, देयर इज नो हगिंग, देयर इज नो लव, कुछ भी नहीं है, बस एक वो है कि डोपामिन. अब उसके बाद क्या है कि बिकॉज वो कंप्लीशन जो है, पोस्ट ऑर्गेजमिक जो पीरियड है 30 मिनट्स का, जिसमें आप बॉन्ड कर रहे हो, जिसमें आप रिलैक्स कर रहे हो, जिसमें आपको लग रहा है कि मैं बादशाह हूँ, मेरी वाइफ है, वो पीरियड गायब हो गया पॉन में, ठीक है. तो यू अगेन वॉन्टेड डोपामिन सर्ज, तो यू आर जस्ट गोइंग ऑन अबाउट अगेन एंड अगेन, कंप्लीशन नहीं हुआ सेक्सुअल एक्ट का, या सेक्सुअल कंप्लीशन हुआ है, ठीक है. वुमेन में जो स्टेज है ये प्रोलॉन्ग्ड होता है, वुमेन के अंदर जो अराउजल स्टेज है वो बहुत लंबा होता है, ठीक है. मैन अराउज इन 10 सेकेंड्स. सो आप देखोगे सेक्स इज वायलेंस, यू आर पेनिट्रेटिंग समबडी, ठीक है. कैन यू पेनिट्रेट समबडी लाइक दिस, अगर मैं आपके आपके कान में उंगली डालू आके, तो विल यू लाइक इट, ठीक है. बट यू आर हेयर एज अ मैन पेनिट्रेटिंग द वुमन, इट इज एट अ मोस्ट बेसिक लेवल वायलेंस, एंड शी अलाउइंग यू टू डू द वायलेंस टू हर, ठीक है. तो शी नीड्स टू बी फुल्ली इन टू द एक्ट, तो आपको वो मेहनत करनी पड़ेगी.
सो आई लव योर टू एनालॉजीज, फर्स्ट इज की 5 स्टेजेस होती है, डिजायर, अराउजल, इरेक्शन, देन पेनिट्रेशन, एंड देन द पोस्ट
ऑर्गेजमिक
रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बॉन्डिंग. रियली गुड, मतलब काफी
रेपिटेटिव होती है. तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप फर्स्ट टाइम किसी लेडी से मिल रहे हो और फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स कर रहे हैं, तो देर इज अ एलिमेंट ऑफ क्यूरियोसिटी, देर इज अ एलिमेंट ऑफ सरप्राइज, देर इज अ एलिमेंट ऑफ इंटीमेसी, देर इज अ एलिमेंट ऑफ मिस्ट्री. तो उसमें द वुमेन में गेट अराउज फास्टर, ठीक है. यू में शी में ऑर्गेजम फास्टर. बट अगर फर्स्ट एपिसोड ठीक नहीं हुआ आपका, एंड शी देन सेकेंड एपिसोड में एंटिसिपेशन कम हो जाती है, इट स्टार्ट्स फीलिंग कि नहीं इनका इतना हार्ड होता ही नहीं है, इतना टाइमिंग होता ही नहीं है. सो देन हर अराउजल ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग डिलेड. सो इफ द मैन इज एबल टू परफॉर्म वेल, तो वुमेन की एंटिसिपेशन कम हो जाती है, शी नोज कि आई एम गोइंग टू गेट एन ऑर्गेज्म, तो हर अराउजल ऑल्सो क्विकन्स, ठीक है. बट ये है कि अगर आप सेक्स को मिनटों में गिनते रहोगे, इफ यू आर सो फोकस्ड ऑन द मिनट्स, तो कभी सेक्स हो नहीं पाएगा. मैंने फर्स्ट टाइम बोला कि सेक्स हैज टू बी एंजॉयड. जब आप अच्छी चीज खा रहे हो, अच्छी आइसक्रीम खा रहे हो, तो यू आर हैविंग इट, यू आर एंजॉयिंग इट, तो यू डोंट लुक एट द नंबर ऑफ स्पून्स दैट यू ईटिंग, यू डोंट लुक एट कि मैं कितनी देर में खत्म करी, यू आर एंजॉयिंग इट. तो दैट इज वेयर इट इज इंपॉर्टेंट कि जब यू कंसिडर सेक्स एज एन एक्टिविटी टू बी एंजॉयड, ठीक है. आप उसको टास्क नहीं बना सकते कि घड़ी देख रहे हो. जैसे वो मिर्जापुर में जो कालीन भैया का लड़का था, वो सेक्स करते हुए काउंटिंग करता था नंबर ऑफ स्ट्रोक्स, 50 स्ट्रोक लगाए अभी, 70 स्ट्रोक लगाए अभी, 100 स्ट्रोक उसने दिखाया भी उसके अंदर ना, वो बीच में
यार ये तो मैं नोटिस ही नहीं किया, आई वांट टू नाउ गो बैक एंड सी इट.
हां तो ही यूज्ड टू काउंट जब व्हेन ही वाज हैविंग सेक्स विद दैट फीमेल, जब उसको गोली मारने आता है बीच में, तो वो काउंट कर रहा होता है, 70 हो गए, 80 हो गए, 90. तो लड़की कहती है कि लास्ट टाइम 150 लगाए थे, तो कह रहा है मैं 200 लगा हुआ है इस बार, तो वो काउंटिंग कर रहा होता है अपने स्ट्रोक्स की. तो यू कैन नॉट डू दैट, मतलब यू आर, मतलब व्हाट आर यू बाय पुटिंग द स्ट्रोक्स, मतलब एंड द फीमेल इज लाइंग डाउन लुकिंग एट द मोबाइल फोन, वो एक सीन
है, नाउ आई रिमेंबर, यस,
वो फीमेल और मोबाइल फोन देख रही है और नंबर काउंट कर रहा, तो वही वो सेक्स में का मजा नहीं आया ना उसको, फीमेल के लिए तो ठीक है, ही इज जस्ट यूजिंग अ वजाइना एज अ, सो दिस इज अ टर्म दैट आई कॉइंड कॉल्ड अ वजाइनल मास्टरबेशन, मतलब हाथ की वजह वजाइना यूज कर रहे हो मास्टरबेशन ही, तो कोई एंजॉय नहीं कर रहा है इसके अंदर, ठीक है, तो यू जस्ट बेसिकली पेनेट इनसाइड द वजाइना एंड यू जस्ट स्ट्रोकिंग, तो दैट इज ऑल्सो यूजलेस, तो अंटिल अनलेस यू डोंट इन्वॉल्व योर पार्टनर कंप्लीटली इन द प्रोसेस, सेक्स विल बिकम अ टास्क.
यू नो मैंने बहुत पहले, मैं आई थिंक मैं लंदन में था जहाँ पे मैं एक लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स कर रहा था, और उस लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोर्स में देर वॉज वन ट्रेनर फॉर 30 मिनट्स या 45 मिनट्स का एक सेशन था जिसपे विच वॉज अबाउट ऑर्गेजम्स, एंड वो मैन एंड फीमेल ऑर्गेजम्स के बारे में बात करे, तो बहुत बढ़िया बात बताई थी कि एंड आई रियली लाइक दैट, कि फीमेल ऑर्गेजम, अगर किसी भी फीमेल को ऑर्गेजम करवाना हो या मेन को ऑर्गेजम कराना हो, टाइमिंग यूजलेस है, साइज यूजलेस है, योर एवरेज लेट्स से बॉडी स्ट्रक्चर वगैरह सब यूजलेस है, द रियलेस्ट हर चीज़ चार चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है, फर्स्ट इज द मेंटल स्टिमुलेशन, क्या आप मेंटली एक दूसरे के स्टिमुलेटेड हो, जहाँ तुमको एक दूसरे को यू वांट टू नो मोर और यू वांट टू टेक दिस रिलेशनशिप फॉरवर्ड, दैट इज फर्स्ट, तो पहले उस पर फोकस करो, जब वो हो जाता है फिर होता है इन्वायरमेंटल स्टिमुलेशन, कि क्या ये सेफ इन्वायरमेंट है, सम पीपल लाइक कि कभी कभी इन्वायरमेंट सेफ होना चाहिए, सम पीपल लाइक कि थोड़ा एक्साइटमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंट थोड़ा सा यू नो अप एंड डाउन होना चाहिए, एड्रेनलिन फिल्ड होना चाहिए, तो सेकंड इज दैट, कि जैसे ही वुमेन फील सेफ इन द एनवायरमेंट एंड दे नो दैट आई एम विद माय पार्टनर, नथिंग इज गोना हैपन, देन इट्स अनदर, देन थर्ड होता है फिजिकल स्टिमुलेशन, जहाँ पे यू आर एक्चुअली देन विच इज अ एक्ट ऑफ सेक्स, राइट, एंड फोर्थ होता है इमोशनल स्टिमुलेशन, कि इमोशनली जो आपने बोला पोस्ट डिस्चार्ज बॉन्डिंग, कि भले तुम लोगों का ऑर्गेजम हुआ या ना हुआ, आई यू हैप्पी दैट यू डिड इट,
यस,
लाइक आई यू हैप्पी दैट यू डिड इट विद द राइट पर्सन, डू यू फील कंफर्टेबल, डू यू फील नाइस, डू यू फील सिक्योर, डू यू फील इमोशनली कनेक्टेड, तो अगर ये चारों स्टिमुलेशन हो जाते हैं तो देन दैट्स हाउ ऑर्गेजम स्टार्ट्स, क्योंकि ये जब चारों स्टिमुलेशन होते हैं तो सिंक स्टार्ट होता है, एंड बहुत बार पीपल डोंट इवन रियलाइज, जो ऑर्गेजम करते हैं उनका सिंक ब्रीदिंग पैटर्न से स्टार्ट होते से लास्ट में ऑर्गेजम जो रिलीज होता है तब तक हो जाता है,
बिल्कुल,
एंड यू डोंट इवन रियलाइज दैट, एंड वन ऑफ द बेस्ट साइंस जो ऑर्गेजम की थी कि सी अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे हो ऑर्गेनिकली, यू आर नॉट एबल टू फुल्ली एंजॉय इट, ट्राई टू मैच योर ब्रीदिंग पैटर्न एंड स्टार्ट सिंकिंग एवरीथिंग एंड देन मे बी थिंग्स विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, डोंट थिंक कि काउंट कितना करना है, स्टार्ट थिंकिंग कि मैं सिंक कितना कर पा रहा हूँ मेरे पार्टनर से,
तो
आई रियली लव दिस होल आइडिया ऑफ व्हाट आई लर्नड देयर,
ये बहुत अच्छा है एंड दिस इज वेरी प्रैक्टिकल, बट मैं आपको बताऊं 90% ऑफ कपल्स म्यूचुअल क्लाइमैक्स नहीं करते, ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, ये और ये भी पॉन से और मीडिया से आया कि आप सेक्स कर रहे हो और सेक्स करते करते हीविंग करते हुए दोनों एक साथ ऑर्गेजम हो गए, म्यूचुअल क्लाइमैक्स बहुत रेयरली होता है, वुमेन कैन क्लाइमैक्स मल्टीपल टाइम्स एंड शी कैन क्लाइमैक्स विथ हर ओन बॉडी, मेन विल क्लाइमैक्स वंस एंड देन मे बी रिक्वायर अनदर 10-20 मिनट्स और मे बी 1 hour टू गेट हार्ड अगेन एंड ऑर्गेजम अगेन, बहुत कपल्स नॉन सिंक्रोनस क्लाइमैक्स करते हैं, मतलब कि पहले वाइफ क्लाइमैक्स हो जाएगी फिर हस्बैंड क्लाइमैक्स करेगा, या हस्बैंड क्लाइमैक्स करेगा फिर वाइफ क्लाइमैक्स करेगी फिर हस्बैंड फिर से एक बार क्लाइमैक्स करेगा, तो ये म्यूचुअल क्लाइमैक्स का जो एक ये मेंटल इमेज है ना कि एक वो हीविंग है और ब्रीदिंग है और फाइनली एक इरप्शन हुआ और वो ठीक है, वेरी नाइस, दैट मे हैपन वंस और ट्वाइस इन अ लाइफ टाइम
एंड इट शुड हैपन रेयरली बिकॉज देन
दैट्स व्हाट
मेक्स इट रियली स्पेशल,
बिल्कुल, बट मोस्ट कपल्स जो है वो उनको सेक्स जो है ना वो एक मैजिक की बजाय ना एक रूटीन की तरह उसको हैंडल करना चाहिए, कि सेक्स एक पार्ट ऑफ लाइफ है, जरूरी है हमारे रिलेशनशिप के लिए, हम सेक्स कर रहे हैं तो हमको दोनों को ही क्लाइमैक्स करना है, अब उसके लिए मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना है और अपनी वाइफ को मेरे लिए इम्प्रूव करना है, कई हस्बैंड्स हैं उनको अराउजल नहीं होता वाइफ से आफ्टर अ पर्टिकुलर एज, मतलब बिकॉज ऑफ द सेम पर्सन अगैन एंड अगैन, फिजिकल बॉडी नहीं उतनी अट्रैक्टिव लग रही है, चीज़ें इतनी बेटर नहीं लग रही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइफ की भी है कि अपने हस्बैंड को फुली अराउज करे।
ओके, आई हैव क्वेश्चंस। इन सब के इस प्रेशर परफॉर्मेंस इन सब की वजह से ना वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम जो बढ़ते जा रही है दैट इज ईडी, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, कि पेनिस इरेक्ट नहीं होता एट द टाइम ऑफ इंटरकोर्स, एट द टाइम ऑफ सेक्स, एंड ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ते जा रही है, डू यू थिंक कि ये एक नेचुरल प्रॉब्लम है जो हर कोई हर किसी को कभी ना कभी होगी होगी या होती रहती है, एंड इट्स 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 फेजेस की आता है जाता है. कि डू यू थिंक इट्स प्रॉपर मेडिकल प्रॉब्लम?
इरेक्टाइल डिसफंक्शन मेडिकल प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन एक बहुत लेयर टॉपिक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के कम से कम 8 तो कॉजेज है, जो ब्रॉड कॉजेज बोलते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन के अगर मोटे मोटे कॉजेज देखोगे तो इसमें साइकोजेनिक होता है। साइकोजेनिक मतलब दिमागी रूप से इरेक्शन नहीं आ रहा, उसके अंदर मल्टीपल है उसमें, जैसे वी कैन डिस्कस इट इन टॉपिक्स। फिर एक होता है आर्टेरियल, आर्टेरियल मतलब कि ब्लड सप्लाई खराब हो गई है। अब वो क्यों खराब हुई, उसके मल्टीपल कॉजेज है। फिर न्यूरोजेनिक है कि रिफ्लेक्सेस जो हमारे CNS के है, नर्व्स है, प्रॉपरली काम नहीं कर रही है। हार्मोनल है कि टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो गया है या बाकी हार्मोन्स खराब हो गए हैं। ट्रोमेटिक है, चोट लग गई किसी कारण से, एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। फिर अदर रेयर अनकॉमन कॉजेज भी है, बट मोटा मोटा इरेक्टाइल डिसफंक्शन अगर है तो ये सोचना कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन मुझे है अपने आप ठीक हो जाएगा, नहीं होने वाला। अगर इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसका कॉज ढूंढना, उसके कॉज को ट्रीटमेंट करना जरूरी है, और उसके बाद ही ठीक होगा। सेकेंड है कि आजकल एक वर्ड है परफॉर्मेंस प्रेशर। देखो प्रेशर उसको आता है, ठीक है, जिसको इरेक्शन नहीं आता है, ठीक है। अगर आपको इरेक्शन आता है तो प्रेशर नहीं आएगा, ठीक है। तो मेनी टाइम परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता, इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है बिकॉज ऑफ क्रॉनिक मास्टरबेशन, बिकॉज ऑफ क्रॉनिक सेटिंग, लाइफ स्टाइल चॉइसेस, पुअर हार्मोन्स। तो मल्टीपल रीजन की वजह से आपको ईडी है, और आप उस ईडी की वजह से आप प्रेशर में हो, क्योंकि आपको पता है कि इरेक्शन आ ही नहीं रहे हैं, वैसे भी नहीं आ रहे, जनरली भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो उसको फिर हम एक गलत प्रेशर बना के फिर उसको फिर एंटी एंग्जाइटी और वो दे, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आपको ईडी है, अगर आप बेडरूम में परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो, अगर आप जितना चाह रहे हो पार्टनर के साथ उतना सेक्स नहीं कर पा रहे हो, तो जरूरी है कि उसको उसका कॉज ढूंढा जाए और उसका ट्रीटमेंट किया जाए, एंड मोस्ट पेशेंट ट्रीटमेंट ठीक हो जाते हैं।
ओके, सो क्वेश्चन ऑन दिस, बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, बिकॉज मैं आज इससे पहले ना पूरा क्वोरा देख रहा था, एंड उस पर ये सारे भी क्वेश्चन थे कि समटाइम्स मेरी सेक्स लाइफ बहुत बढ़िया चलती है जहां पे आई एम हैविंग सेक्स मल्टीपल टाइम्स इन अ डे, एंड कुछ टाइम ऐसा होता है जहां पे मेरे को इरेक्शन ही नहीं हो रहा। डू यू थिंक दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन?
यस, तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, अगर आपको इरेक्शन जो आप चाह रहे हो आपको इरेक्शन नहीं हो रहा, वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। बट दैट कैन बी टेम्पररी और दैट कैन बी परमानेंट।
ओके,
तो कई लोगों में एपिसोडिक होता है। एपिसोडिक मतलब पार्टनर डिफरेंट है, तो एक पार्टनर से होता है, एक पार्टनर से नहीं होता, ठीक है। जगह डिफरेंट है, जैसे बोला आपने कंफर्टेबल स्पेस नहीं मिल रही है, उधर नहीं हो रहा है। थर्ड है कोई स्ट्रेसर है, अब हो सकता है कि जैसे कई कई पेशेंट्स मेरे पे आते हैं जो कॉर्पोरेट जॉब में है, जिनका बहुत हेक्टिक लाइफ स्टाइल है, खाली वीकेंड्स पे ऑफ मिलता है और वीकेंड पे थके होते हैं, तो वो कहते हैं कि जब हम छुट्टी पे होते हैं या 5-6 दिन हम लोग फ्री है तो हम अच्छा सेक्स होता है, पर जब मैं स्ट्रेस में हूँ या वर्क प्रेशर में हूँ या मैंने नींद ठीक से नहीं ली है तो उस दिन नहीं भी होता है, ठीक है। तो दैट इज नॉट इरेक्टाइल डिसफंक्शन पर से, वो पेशेंट इरेक्टाइल क्वालिटी ठीक है उसकी, पर हो सकता है कि उसके वर्क एनवायरनमेंट चेंज करने से या उसके स्लीप पैटर्न बदलने से या उसकी रेस्ट से वो ठीक हो जाए,
इफेक्ट होता है वो तो हो जाए। उस केस में क्या करना चाहिए लोग? जस्ट लाइफस्टाइल इंप्रूवमेंट?
यस, तो फर्स्ट स्टेप ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन ट्रीटमेंट, कोई भी इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो, वो लाइफस्टाइल चेंज है, ठीक है। तो हम चार चीजें बताते हैं पेशेंट्स को जो हमें, मतलब आपको ईडी है, अगर आप आज के दिन आपको प्रेशर है परफॉर्मेंस का, आप दवाइयां नहीं लेना चाहते कुछ भी, तो चार चीजें हैं जो आप आज से कर सकते हैं जिससे आपको चीजें बेटर मिलेगी। पहली है नींद, स्लीप। तो आप स्लीप साइकिल ठीक करिए, नाइट जॉब है, प्रॉपरली सो नहीं पा रहे हैं, टाइम नहीं मिलता सोने का, तो उसको ठीक करिए।
कितना सोना चाहिए इंसान को?
आइडली 6 to 7 hours ऑफ अनडिस्टर्ब्ड स्लीप, बिकॉज जो टेस्टोस्टेरोन है ना वो स्लीप साइकिल से लिंक्ड होता है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ गुड स्लीप देन टेस्टोस्टेरोन बूस्ट इन द मॉर्निंग। अगर आपकी स्लीप ठीक नहीं हो टेस्टोस्टेरोन कभी बढ़ेगा नहीं, आपको लो टेस्टोस्टेरोन मिलेगा हमेशा। सो गुड स्लीप, स्टार्ट एक्सरसाइजिंग, सेम रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, ठीक है, इंप्रूव योर डाइट, वही डायट्री फैट टेस्टोस्टेरोन बूस्टिंग के लिए, एंड कीगल एक्सरसाइज। कीगल एक्सरसाइज इज बेसिकली एक्सरसाइज ऑफ द पिनाइल मसल्स। तो यू स्टार्ट दिस फोर थिंग्स, एंड अगर ये छोटे मोटे डिफेक्ट्स होंगे दे विल इम्प्रूव।
यू थिंक कीगल एक्सरसाइजेस वर्क करती
है? एक्सीलेंट वर्क करती है। तो कीगल एक्सरसाइज इज द बेस्ट थिंग डेट यू कैन डू फॉर योर लोअर पेल्विस टूडे। कीगल एक्सरसाइज से आपको यूरिनेशन ठीक हो जाएगा, प्रोस्टेट नहीं बढ़ेगा, सीमन क्वालिटी बेटर हो जाएगी, इरेक्टाइल क्वालिटी बेटर हो जाएगी, इरेक्शन होल्ड होने शुरू हो जाएंगे, टाइमिंग बढ़ जाएगी। तो कीगल एक्सरसाइज तो हर आदमी को करनी ही चाहिए, इट शुड बी डन, एंड रीजन फॉर दैट इज क्योंकि हमारा क्रॉनिक सिटिंग हो गया, ठीक है। बिकॉज ऑफ क्रॉनिकली सिटिंग आवर पेल्विस इज अ हैमॉक, वो ढुलक जाता है, वो इट नॉट एबल टू सपोर्ट। सो कीगल एक्सरसाइज शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे। इफ यू आर अ मैन, आपको कीगल एक्सरसाइज, आप कोई मत करो कोई एक्सरसाइज, और एक कीगल एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। तो कीगल एक्सरसाइज में कुछ नहीं करना है, इमेजिन कि यू हैव टू गो टू द लू, आपको बहुत तेज से प्रेशर आया है एंड आपको जाना है, पर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, तो आप क्या करोगे? यू विल जस्ट क्लेंच टू स्टॉप इट, बस दैट इज अ कीगल एक्सरसाइज। तो आपको अपने जो एनल एरिया है उसको क्लेंच करके अंदर की तरफ खींच के रखना है,
पॉटी रोकनी।
तो पॉटी को रोकने को कीगल एक्सरसाइज बोलते हैं। तो यू क्लेंच इट 30 seconds, क्लॉक देख के, एंड देन रिलीज इट। सो व्हाट हैपेंस, ऑल द मसल्स ऑफ द लोअर एरिया गेट एक्सरसाइज। सो दैट इज द बेसिक कीगल एक्सरसाइज। एंड कीगल एक्सरसाइज इज लाइक समथिंग दैट विल शो यू इमीडिएट इंप्रूवमेंट। आप 15 दिन करो, 15 डेज बाद यू स्टार्ट नोटिसिंग यू गेटिंग हार्डर रिएक्शंस एंड एबल टू सस्टेन लॉन्गर। कीगल्स तो करनी चाहिए।
एंड 30 seconds अ डे की 5 times 10 times?
नॉर्मली 5 times के 30 seconds के सेशंस होते हैं, बट इनिशियली वी टेल देम टू स्टार्ट डूइंग ट्वाइस अ डे, मॉर्निंग में 30 seconds के दो और इवनिंग में। एंड एज यू स्टार्ट शोइंग इम्प्रूवमेंट यू कैन इंक्रीज इट टू अ मिनट।
ओके, कमिंग टू ईडी के बाद वन ऑफ द बिगर प्रॉब्लम्स इज इरेक्टाइल प्रीमैच्योर इजैकुलेशन। आपने बोला कि हर इंसान, लाइक हर लड़के को, हर मर्द को, एवरी मैन, उसको जब उसकी इच्छा हो इजैकुलेट करने की तभी करना चाहिए, इनएक्ट हो नहीं जाना चाहिए, राइट? उसके कंट्रोल में होना चाहिए।
यस,
दैट इज समथिंग वेरी न्यू दैट आई एम हियरिंग।
मैंने दो चीजें इसमें ना, जब आपका पार्टनर आपसे कंफर्टेबल हो जाता है तो 3 चीजें होनी शुरू हो जाती है। पहला, आपकी परफॉर्मेंस एंग्जाइटी घट जाती है, आपसे प्रेशर रिलीव जाता है, यू स्टार्ट रियलाइजिंग कि मेरी कंपेटिबिलिटी ठीक है, एंड यू बिकम मोर कॉन्फिडेंट एंड रिलैक्स्ड। नॉर्मली व्हेन यू आर एंशियस, आप एक फ्लाइट एंड फाइट सीक्वेंस में होते हो, तो व्हेन जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स है ना, वो दैट इज पैरासिम्पथेटिक। मतलब समझोगे तो सेक्सुअल रिस्पॉन्स इज पैरासिम्पथेटिक एंड डिस्चार्ज इज सिंपथेटिक। तो पैरासिम्पथेटिक मतलब कि जो रिलैक्स मोड है, सिंपथेटिक मतलब कि जो आपका डर वाला मोड है। जब एंग्शियस होते हो तो आपका सिंपथेटिक एक्टिविटी हाई रहती है, तो आपकी बॉडी कोशिश करती है इमीडिएट डिस्चार्ज करने की, उसको एक बार डिस्चार्ज करो भाग यहां से, ठीक है। व्हेन यू आर कंफर्टेबल विद पार्टनर, योर पैरासिम्पथेटिक रिस्पॉन्स राइजेस, ठीक है, यू आर नॉट दैट मच स्ट्रेस, यू आर लाइक ठीक है सेक्स तो हो ही जाएगा। सेकेंड इज योर पार्टनर स्टार्ट गेटिंग मोर वेट, योर पार्टनर इज मोर अराउज, ठीक है,
बिकॉज़ दे आर मोर कंफर्टेबल विद यू।
सो द फ्रिक्शन दैट इज हैपनिंग इन द लोअर पार्ट्स टेंड्स टू रिड्यूस, यू आर एबल टू गेट मोर स्लिपरी, यू डोंट गेट दैट मच सेंसेशन आप फर्स्ट टाइम। थर्ड इज नोवेल्टी फैक्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। व्हेन यू आर विद अ यंग वेरी वेरी न्यू पार्टनर, यू आर सो एक्साइटेड कि यू नॉट एबल टू होल्ड इट, ठीक है। सो इस वजह से क्या, मोस्ट कपल्स में 5, 7, 10, 12 के बाद टाइमिंग ठीक हो जाती है, पर प्रॉब्लम कहां पर आती है कि जो न्यूली मैरिड कपल्स है या नए कपल्स है, वो फर्स्ट 2 बार के अंदर बना लेते हैं मेंटली कि प्रॉब्लम है, ठीक है। तो क्या है, अगर कोई सपोज शादी नहीं हुई है, 3 बार हुआ है, 3 बार में जल्दी डिस्चार्ज हो गया, तो इमीडिएट यू आर नॉट गुड इनफ, एंड देन द कॉन्फिडेंस टूट जाता है आदमी का। अगर वाइफ अपने हस्बैंड को दे दे 5-10 बार कि हो जाएगा ठीक, और हो जाता है ठीक, मोस्ट मैन आर ओके, तो चीजें बेटर हो जाती है, ठीक है, पर वो टाइम मिल नहीं पाता। अगर वो 1 night stand है या कोई टेंडर डेट है, तो उसमें क्या एक्साइटमेंट इतनी हाई होती है कि चीजें वैसे खराब हो जाती है,
फिर वहां से दिमाग में
आता है कि मुझे ईडी है, मुझे पीएमई है, मुझे ईडी है। वंस योर कॉन्फिडेंस ब्रोकन, देन यू टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिपेयर थिंग्स।
बट प्रीमैच्योर इजैकुलेशन पता क्या चलता है कि है, व्हाट इज प्रीमैच्योर इजैकुलेशन?
तो प्रीमैच्योर इजैकुलेशन की वैसे
कैसे होल्ड कर सकता है कोई इंसान टू द पॉइंट वेयर उसकी इच्छा से रिलीज हो उसके पहले नहीं हो?
देखो,
दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, बिकॉज अ लॉट ऑफ वुमेन से कि मैं बस ये चाहती थी कि 30 seconds और यू वुड हैव लास्टेड, लाइक 1 more minute यू वुड हैव लास्टेड। मैं
हर लेडी ये चाहती है, वो होता नहीं। तो इजैकुलेटरी रिस्पॉन्स बनना पड़ेगा इसके लिए हमें। जैसे मैंने बताया था आपको कि सेक्स के 6 पार्ट होते हैं, वैसे इजैकुलेटरी रिस्पॉन्स के 3 पार्ट होते हैं। आप इरेक्ट हो गए और जब आपने सेक्स करना स्टार्ट किया, तो आपका जो पेनिस का टिप है उसमें नर्व्स है, वहां से सेंसेशन स्टार्ट होती है। तो नॉर्मली सेंसेशन 2 type की होती है, एक होता है टच, एक होता है वाइब्रेशन, जो मूवमेंट हो रही है। सेंसेशन आती है तो सेंसेशन आपके स्पाइनल कॉर्ड लेवल से ब्रेन पे जाती है। ब्रेन आपका डिसाइड करता है कि आपको कितना प्लेजर आ रहा है, ठीक है, यू आर एंजॉइंग द एंटायर फीलिंग। और फाइनली व्हेन द ब्रेन थिंक्स कि नाउ इट्स टाइम टू इजैकुलेट, द सिग्नल गोज बैक एंड यू डिस्चार्ज, ठीक है। अब होता क्या, मोस्ट मेन में सेंसेशन बहुत ज्यादा हाई है, अगर तो वो ग्लांस या पेनिस का टिप बहुत सेंसिटिव है, या उनके रिफ्लेक्सेस ब्रेन तक जा ही नहीं रहे, स्पाइनल कॉर्ड लेवल पे काम कर रहे हैं, मतलब वो फुल्ली मेंटली इन्वॉल्व ही नहीं है, ठीक है, माइंड उसका फोकस है कहीं पर और, सिर्फ पेनिस मूवमेंट हो रही है, तो इमीडिएटली रिफ्लेक्सेस गो बैक, एंड देन अगर नीचे जो मसल्स है वो होल्ड नहीं कर पा रहे तो एकदम डिस्चार्ज हो जाता है। तो हम पीएमई को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सीवियर पीएमई, सीवियर पीएमई मतलब कि सेक्स स्टार्ट नहीं कर पाता आदमी, किसिंग से डिस्चार्ज हो गया, टच करते डिस्चार्ज हो गया, थोड़ा सा फीमेल पार्टनर को टच किया डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। यू सी सो मेनी टाइम्स यू सी मूवीज में कि थोड़ा सा कोई फीमेल है जो थोड़ी सी मिडल एज में है, यंग गाय, जस्ट थोड़ा सा उसको रब किया, डेट को सीवियर पीएमई, मतलब आपको बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, ठीक है। दिस समथिंग कॉल्ड एज मॉडरेट. मॉडरेट मतलब कि यू आर एबल टू पेनिट्रेट, यू आर एबल टू एंटर द फीमेल, बट यू आर नॉट एबल टू होल्ड इट फॉर मोर देन अ फ्यू सेकेंड्स और मे बी अ मिनट. ठीक है, तो आपने पेनिट्रेशन किया, थोड़ा सा मूवमेंट हुआ और डिस्चार्ज हो गया. और थर्ड होता है माइल्ड पीएमई, जो आप बता रहे हो, जिसमें है कि 30 सेकेंड और हो जाते. तो माइल्ड पीएमई मतलब कि आप सेक्स कर पा रहे हो, हार्डनेस है, सब कुछ है, थोड़ा सा आपको इम्प्रूवमेंट करना है, वो कीगल से, मसाज से, ग्लांड सेंसिटिविटी कम करने से, थोड़ा सा सीएनएस पर फोकस करने से ठीक हो सकता है. मॉडरेट पीएमई मेडिकेशन की रिक्वायरमेंट है. ठीक है, और सीवियर के अंदर वी हैव देन अदर ट्रीटमेंट्स लाइक बोटॉक्स, वी हैव ट्रीटमेंट लाइक फिलर्स, वी हैव ट्रीटमेंट लाइक सर्कमसीजन, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट्स है, और मे बी रीट्रेनिंग ऑफ द फोकस एरियाज, जिससे पेशेंट ठीक हो सकता है. और मेडिकेशन के बाद देन वी हैव रिहैब प्रोटोकॉल, जैसे पीआरपी है जो बालों में लगता था पहले, और पीआरपी पेनिस के लिए भी आता है, उसको पी शॉर्ट बोलते हैं. ठीक है, बोटॉक्स है जो लिप्स में जो लोग लगाते हैं रिंकल्स के लिए, और सो मेनी बॉलीवुड में लगता है, तो दैट बोटॉक्स कैन बी पुट नियर द पेनिस ऑल्सो, जिससे आपका रिटेंशन टाइम बढ़ता है, एजेकुलेशन टाइम इंप्रूव होता है. यस, सो बोटॉक्स इज लाइक अ वंडरफुल न्यू थेरेपी विच हैज कम इन. ठीक है, फिर आपके पास
6 महीने, साल भर, 2 साल वापस
साल बाद करना पड़ता है, पर ठीक है, साल तक आप एटलीस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो यू गेट इट डन अगेन एंड देन.
किसको करवाना चाहिए बोटॉक्स और किसको करवाना चाहिए पीआरपी?
तो स्टेप वाइज ट्रीटमेंट है, तो स्टेप वाइज ट्रीटमेंट इज गोल ओरिएंटेड ट्रीटमेंट. तो पहले तो हमें समझना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम है कितनी. ठीक है, दूसरा है कि वो प्रॉब्लम उसकी मोमेंट्री है, सिर्फ ये नई रिलेशनशिप की वजह से है या एंग्जायटी की वजह से है, एंड गोल क्या है. तो हो सकता है कि पेशेंट का टाइमिंग ठीक है, मतलब 7 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, पर उनके पार्टनर का टाइमिंग बहुत ज्यादा है, तो नो ही हैज टू समहाउ इंक्रीज इट. एंड द फीमेल का टाइमिंग भी कम कर सकते हैं थोड़ा सा, मतलब समबडी सम वुमेन इज टेकिंग टू मच टाइम टू ऑर्गेज्म, तो वी कैन ऑल्सो ट्राई कि उनका थोड़ा टाइमिंग, तो वी कैन इंक्रीज फ्रॉम दिस साइड एंड डिक्रीज फ्रॉम दैट साइड, तो वी कैन रीच अ कॉमनैलिटी. तो वो भी पॉसिबिलिटीज है. ठीक है, एंड देन अगर सब कुछ फेल हो जाता है, अगर आज के दिन फॉर एग्जाम्पल आपने मेडिसिन लगा लिया, इंजेक्शन लगा लिया, आपने थेरेपी कर ली, आपने एक्सरसाइज करा ली, नहीं हो रहा, नहीं मैनेज हो रहा, तो देन वी हैव सर्जिकल सोल्यूशंस, जिसके अंदर पेनाइल इम्प्लांट्स होते हैं, जो आजकल नया टेक्नोलॉजी है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए इंडिया में.
पेनाइल इम्प्लांट्स,
यस,
क्या होता है ये?
अगर पेनिस के अंदर ब्लड सप्लाई खराब हो गई है, अगर पेनिस के अंदर जो है खून नहीं आ पा रहा है, इरेक्शन नहीं आ पा रहा है, तो हम उसको साफ करके उसके अंदर भी मैकेनिकल डिवाइस लगा सकते हैं. तो उससे क्या है कि बाहर सब कुछ सेम रहेगा, जैसे आंखों में लेंस चेंज हुआ तो दिखता तो सेम ही है, क्योंकि लेंस खराब हुआ है, आंख नहीं खराब हुई है, वैसे ही लिंक खराब नहीं हुआ है, जो पेनिस खराब नहीं हुआ है, पेनिस में सेंसेशन है, डिस्चार्ज का मैकेनिज्म है, पेनिस में सीमन निकलता है, सेक्स कर सकता है, पर हम उसके अंदर एक मैकेनिकल डिवाइस फिट कर सकते हैं कि जब पेशेंट चाहे तो उसको इरेक्ट कर ले, जब चाहे तो उसको डाउन कर ले, दैट्स कॉल्ड अ पेनाइल इम्प्लांट.
गॉट इट. ओके, आई हैव टू मेनी क्वेश्चंस बेस्ड ऑन गूगल पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है. आई एम गोना गो वन बाय वन टू ऑल ऑफ दिस, राइट? फर्स्ट इज, क्या ओरल सेक्स से कैंसर हो सकता है?
तो ओरल सेक्स से कैंसर नहीं होता, पर एक वायरस होता है, एचपीवी बोलते हैं उसको, तो दैट वायरस कैन कॉज कैंसर लॉन्ग टर्म में. तो रिसेंटली जितने भी ओरल कैंसर है वो मोस्टली उस वायरस से ही होते हैं. ठीक है, तो ये वायरस जो है, ये अभी इसकी वैक्सीन आ गई है, अभी तो जितने बच्चे हैं 12 साल से कम को वैक्सीन लग रही है, तो जहां तक है 10 ईयर्स डाउन द लाइन ये सब में वो वायरस नहीं रहेगा, तो ओरल कैंसर का रेट कम हो जाएगा.
ओके,
पर अगर आप ओरल सेक्स करते हैं तो वो वायरस जा सकता है, उससे कैंसर हो सकता है.
ओके, आई हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सर्कमसिजन जो होता है उसका कोई बेनिफिट होता है?
हाँ, तो सर्कमसिजन ये एक्चुअली कॉन्ट्रोवर्शियल टॉपिक है बिकॉज ऑफ आर कंट्री, जहाँ पर सर्कमसिजन एक हिंदू मुस्लिम डिवाइड है. ठीक है, बट सर्कमसिजन के कुछ बेनिफिट्स है जो है, मतलब उसमें कोई साइंटिफिक कंसेंसस है. पहला, सर्कमसाइज पेनिस में एसटीडीज कम होते हैं. तो सर्कमसिजन से क्या होता है कि जो वेटनेस है ग्लांड्स की खत्म हो जाती है, जो एक उसके जो सेल्स है वो थोड़े हार्ड हो जाते हैं, उस कारण से एसटीडीज का चांस कम होता है. तो सर्कमसाइज पेनिस में इन्फेक्शन का रिस्क कम हो जाता है. तो जैसे अफ्रीका में तो एड्स प्रिवेंशन के लिए सर्कमसिजन प्रमोट करते हैं. जो बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है, इन लोगों ने एक डिवाइस बनाया सर्कमसिजन का, देखो शैंग रिंग बोलते हैं, एंड दे डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री इन एंटायर अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में फ्री दिया है सर्कमसिजन करके उन्होंने एड्स प्रेवलेंस कम करने के लिए. तो सर्कमसाइज मैन में एड्स ट्रांसमिशन कम होता है. ठीक है, जो मैन हु हैव सेक्स विद मैन, उसके अंदर भी सर्कमसिजन करने से इन्फेक्शन कम होते हैं. एक एडवांटेज सर्कमसिजन का यह है. सेकेंड एडवांटेज सर्कमसिजन का है कि सर्कमसिजन करने के बाद पेनाइल कैंसर नहीं होता. तो जो पेनिस में कैंसर होता है, एचपीवी कैंसर होता है, ये कैंसर की रिस्क खत्म हो जाते हैं.
रियली?
तो सर्कमसाइज मैन में कभी भी पेनिस कैंसर नहीं होता. पेनिस कैंसर सिर्फ नॉन सर्कमसाइज मैन में ही होता है. ठीक है, तीसरा जो एक परसीव्ड बेनिफिट है वो है सर्कमसाइज पेनिस में टाइमिंग या जो स्टिमुलेशन है वो बेटर होती है, थोड़ी सेंसिटिविटी कम होने के कारण इमीडिएट जो डिस्चार्ज होता है, जो एक सेंसेशन है वो इम्प्रूव हो जाती है, तो सर्कमसाइज मेन में टाइमिंग थोड़ा बेटर रहता है। ठीक है, तो ये तीन बेनिफिट्स है सर्कमसीजन के, पर सर्कमसीजन में दो कॉन्ट्रोवर्सीज है। पहला है पेडियाट्रिक सर्कमसीजन, मतलब बच्चों में सर्कमसीजन करना, तो अभी पूरे वर्ल्ड में कंसेंसस है कि सर्कमसीजन इज अ राइट जो बच्चों को देना चाहिए चूज करने के लिए उन्हें कब करना है। तो जो पहले जैसे वेस्ट में होता था, यूएस में, ऑस्ट्रेलिया में, जहाँ पर बच्चों से बिना पूछे सर्कमसीजन होता था, वो बंद हो गया है। नाउ दे अलाउ द चाइल्ड टू टेक अ डिसीजन, इन्फॉर्म डिसीजन कि करना है नहीं करना,
कौन सी एज पे,
12 ईयर्स, 15 ईयर्स विद पेरेंट्स कंसल्टेशन। ठीक है, इस्लाम में अभी भी क्योंकि इट इज अ पार्ट ऑफ देयर रिचुअल तो वो होता है, बट इन नॉन इस्लामिक जहां पर सिर्फ एस्थेटिक्स के लिए कर रहे थे वहां पर अभी बच्चे को राइट दिया है चूज करने का। और दूसरा सर्कमसीजन में कॉन्ट्रोवर्सी ये बिकॉज ऑफ हिंदू मुस्लिम डिवाइड है। एज अ डॉक्टर यू से प्रमोटिंग सर्कमसीजन, तो आई डोंट प्रमोट सर्कमसीजन, बट अगर किसी को सर्कमसीजन की वजह से इन्फेक्शन हो रहा है या स्किन खराब है तो सर्कमसीजन उनका एसटीडी खत्म कर देता है, इन्फेक्शन खत्म कर देता है।
Got it. Okay, how to last longer in bed? Give me three tips.
So three tips में first tip is reduce your anxiety. आप sex enjoy कीजिए, timing मत करिए। जब आप sex
stroke
ध्यान,
मत count करिए।
हाँ, stroke मत count करिए। जब आप sex पे focus करेंगे तो timing बढ़ेगा। दूसरा है regular kegels. Kegel exercise से बहुत फर्क पड़ता है। Kegel exercise से आपकी holding capacity, sudden discharge कम होता है। And third है कि जल्दबाजी ना करिए। Premature ejaculation जल्दबाजी में होता है, जल्दबाजी
कम है, जल्दी जल्दी,
हाँ जल्दबाजी में, जल्दबाजी नहीं करनी। आप अपने पार्टनर को पूरा अराउज करिए, टाइम दीजिए, कोई जल्दी नहीं है, कोई ट्रेन नहीं पकड़ रही है। अगर आपको जल्दी है तो करो मत, पोस्टपोन कर दो उसको। ठीक है, ये नहीं करना कि इमीडिएटली बस हमें इंसर्ट करना है और आउट करना है। तो अगर आप टाइम दोगे अपने आप को भी और सामने को भी तो फिर चीज़ें बेटर होगी।
ओके, ये जो पॉर्न वेबसाइट्स पे ना एड्स आती हैं 25 डेज में आपका पीनस इनलार्ज कर दो, बड़ा कर दो, ये सारी ऐड जाती हैं, बहुत सारी पिल्स बेचते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस बेचते हैं, बहुत बड़ा मार्केट है इसका। डू यू थिंक कुछ भी वर्क करता है उनमें से, पीनस इनलार्जमेंट थ्रू
पिल्स? पिनाइल इनलार्जमेंट, हाँ। तो पिनाइल इनलार्जमेंट एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसको इतना सिंपली एड्रेस नहीं कर सकते।
जो बोलते हैं कि 25 दिन में साइज बड़ा करो, ये सब, डू यू थिंक ऑल ऑफ दैट इज ट्रू?
नहीं, तो कोई भी पेनिस का साइज टैबलेट खा के बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, फर्स्ट थिंग,
कोई लोशन, कोई एप्लीकेंट,
कोई भी दवाई लगाने से, खाने से पेनिस का साइज नहीं बढ़ सकता। पर पेनिस का साइज नहीं बढ़ सकता ऐसा भी अनट्रू है।
ओके,
ठीक है, तो पेनिस का साइज बढ़ सकता है, पेनिस एनलार्जमेंट एक साइंस है। पेनिस एनलार्जमेंट को प्रॉपरली किया जाए तो करेक्टली चोजन पेशेंट्स में पेनिस एनलार्जमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अब पेनिस एनलार्जमेंट किस तरीके से होता है?
सर्जरी के थ्रू?
नहीं, नॉट नेसेसरी सर्जरी। पहला है कि किस एज ग्रुप में पेशेंट आया हुआ है। तो अगर सपोज पेशेंट जो है वो यंग एज ग्रुप में है, अभी फुल्ली मेच्योर नहीं हुआ है, ही इज 15 ईयर्स, 16 ईयर्स, स्टिल ग्रोइंग एज में है, तो बहुत सारे यंग बच्चों में पेनिस ग्रोथ रिस्ट्रिक्टेड होती है, कम होती है। ठीक है, बिकॉज दे नॉट ग्रोइंग अलॉन्ग विद देयर पीयर्स या उनके बच्चों के साथ, तो उनके अंदर ट्रैक्शन और DHT इन दोनों के हेल्प से पेनिस में साइज इक्वलाइज कर सकते हैं हम लोग। तो अगर बच्चा ग्रो कर रहा है और पेरेंट्स ने नोटिस किया है कि दो भाई है, एक भाई का छोटा साइज नहीं ग्रो कर रहा है या पीयर ग्रुप में कंपैरेटिवली नहीं ग्रो कर रहा है, तो पेरेंट्स शुड कंसल्ट अ यूरोलॉजिस्ट। पॉसिबिलिटी है कि यंग एज में हम लोग हार्मोनल स्टिमुलेशन से साइज कैचअप करा सकते हैं।
ओके,
कई बार साइज के साथ में टेस्टिस प्रॉब्लम भी होती है, ठीक है, जो मिस हो जाती है, जो बाद में मैनेज होती है। तो एडोलेसेंट हेल्थ बोलते हैं ना, एडोलेसेंट हेल्थ चेकअप, तो हर फादर को या हर मदर को अपने बच्चे में 12 साल की एज में, 14 साल की एज में तीन चीजें जरूर चेक करनी चाहिए। पहला कि उसके पेनिस की ग्रोथ ठीक हो रही है नहीं हो रही है। सेकंड, जेनिटेलिया जो टेस्टिकुलर साइज है वो ठीक से बढ़ रहा है नहीं बढ़ रहा है। तीसरा, दोनों गोली नीचे है या नहीं है। कई बार क्या होता है, वन टेस्टिस राइजेस अप एंड दे फिगर दिस आउट 22-23 पे। तो इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू चेक देयर सन कि उसकी पेनिस की ग्रोथ ठीक हो रही है, टेस्टिस दोनों है नीचे है, सही ग्रो कर रहे हैं, बच्चे के सेकेंडरी करेक्टर्स प्रॉपरली ग्रो कर रहे नहीं कर रहे, दाढ़ी मूछ आ रही है, बाल उग रहे हैं, मसल मास गेन कर रहा है, मैस्कुलिन करेक्टरिस्टिक्स बन रहे हैं, आवाज गाढ़ी हो रही है, अगर कमी लगती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना है। यंग एज में इसको मैनेज कर सकते हैं, एक बार बच्चा मेच्योर हो गया 21 साल में उसको कुछ नहीं कर सकते।
तो अर्ली एज में,
अर्ली एज में हो सकता है ये पीडियाट्रिक जो प्रॉब्लम्स है। ठीक है, सेकेंड है, अगर आप अडल्ट हो चुके हो और आपका पेनिस आपको साइज में कम लगता है। अब साइज में दो इशू है, दो चीजें हैं। पहला है कि कई बार फ्लैसिड साइज, मतलब लटका हुआ साइज पेशेंट को कम लगता है, दिस इज, ये कब होता है जब आप जिम में हो, लॉकर रूम में हो, दोस्तों में बात कर रहे हैं। कई बार क्या होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल में है, आपने फ्रेंड का देख लिया, आपको लगा कि यार मेरा तो कंपेरेटिवली स्मॉलर साइज में है।
क्या बात करिए, ये सब होता है,
बहुत कॉमन है ये। तो कई बार मर्दों को लगता है कि हमारा फ्लैसिड साइज, जो एक विजिबल साइज है, जो मतलब एडिक्शन की बात नहीं हो रही है, पीयर ग्रुप की बात हो रही है, सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात हो रही है। हाँ,
मेन लुक एट अदर मेन डिक्स एंड देन रियलाइज,
क्योंकि दे लुक एट पॉर्न, दे लुक एट अदर मेन,
इज वन थिंग,
आल्सो लुक एट अदर मेन
लुक एट अदर पीयर ग्रुप एंड बी लाइक कि माय साइज इज स्मॉलर।
यस, बहुत कॉमन है। इतना ज्यादा इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होता है, इतना ज्यादा डिप्रेशन होता है, एंड दे आर मैन, दे आर यंग बॉयज 25-24, जिनको लगता है कि मेरा साइज जो है वो कंपैरेटिवली पीयर ग्रुप से छोटा है। इट्स द सेम विद ब्रेस्ट, वुमेन में ब्रेस्ट साइज का कंपटीशन होता है, सिमिलर विद मेन में होता है
पीनिस साइज का,
ठीक है। तो उनको इरेक्शन में प्रॉब्लम नहीं है, इरेक्शन में उनका साइज पूरा आ रहा है, इरेक्शन में दे आर इन एवरेज साइज, दे आर गेटिंग हार्ड, बट फ्लैसिड में एक कंडीशन बोलते हैं टर्टलिंग। टर्टलिंग मतलब कि पेनिस जो है ना श्रिंक हो जाता है। कई बार क्या होता है, इफ यू आर यू नो इन फेयर, या आप जिम से आए हो, या आपने कोई
कोल्ड
कोल्ड
रीजन,
तो एकदम बिल्कुल श्रिंक हो जाता है, टर्टलिंग। आपको पता है कि आर्मी में जब सिलेक्शन होता है तो उनका पेनिस साइज भी चेक होता है। तो व्हेन द मेन गो फॉर आर्मी सिलेक्शन इन फिजिकल, दे जेनेटिकली एग्जामिन्ड, एंड इफ दे हैव एनी प्रॉब्लम इन द पेनिस, को पेनिस की स्किन बंद है, पेनिस में छेद दो है, अगर पेनिस का यूरिन प्रॉपर बनना नहीं है, पेनिस बहुत श्रिंकेज में है, तो दे विल रिजेक्ट हिम और दे विल मेक अ मेडिकल पॉइंट ऑफ इट।
I didn't know that.
Yes, because they, when they send the soldiers for training, they don't want this infinity complex to propagate there.
Wow.
ठीक
I
है?
Had no clue.
ठीक है? तो flaccid penis का size बढ़ सकता है.
Okay.
ठीक है? So उसमें एक ligament
release. Just for the aesthetics and looks.
तो उसमें multiple, तो अगर हम सिर्फ turtling खत्म कर दें, अगर patient की penis में shrinkage की ability खत्म कर दें, अगर penis hang ही रहे, तो उससे भी patient satisfied हो जाते हैं कई बार। देन कम्स द क्वेश्चन ऑफ साइज इंक्रीज, कि साइज इंक्रीज कैसे किया जाए। तो उसमें लिगामेंट रिलीज एक सर्जरी होती है, जिसमें हम लिगामेंट को कट करते हैं अलॉन्ग विवे प्लास्टिक, एंड वी कैन ऑल्सो पुट इन फिलर्स एंड फैट ग्राफ्टिंग टू इंक्रीज द गर्थ, राइट। तो हम गर्थ इंक्रीज करते हैं तो उससे भी यही फायदा मिलता है कि पेनिस में हैंग आ जाता है। सो दे लाइक द हंग लुक।
टेल मी थ्री वर्स्ट पोजिशन फॉर, थ्री वर्स्ट पोजिशन लाइक थ्री वर्स्ट सेक्स पोजिशन which can cause you penile fracture.
तो थ्री वर्स्ट ऐसे मतलब स्टडी है दे से, बट पीनाइल फ्रैक्चर कब होगा? तो हमारा जो पेनिस है, जो उसकी ट्यूनिका है, हम जो रिपेयर करते हैं, तो ट्यूनिका कैन टेक सो मच फोर्स, मतलब यू कैन एक्चुअली पुट 200 kgs ऑन अ इरेक्ट पेनिस, इट शुड नॉट फ्रैक्चर।
क्या?
हाँ, तो पेनिस फ्रैक्चर इतने आराम से होता नहीं है।
200 kgs
यू कैन पुट ऑन द पेनिस एंड इट विल नॉट फ्रैक्चर इफ यू, इफ इट्स अ स्टैटिक फोर्स।
ओके,
वॉट हैपन डायनेमिक फोर्स, मतलब मोस्टली इज वुमन ऑन टॉप, एंड वेन द सेक्स इज वेरी विगरस, एंड यू नो देर इज लॉट ऑफ जंपिंग गोइंग अराउंड, एंड एट दैट पोजिशन इफ समटाइम्स देर अ डायनेमिक फोर्स विच फॉल्स ऑन द पेनिस, देन इट्स देन द इंजरी कैन हैपन, राइट।
तो इट हर्ट्स, हाँ, इट हर्ट्स।
हाँ, तो पिनाइल फ्रैक्चर विल डेफिनेटली हर्ट, एंड इट्स द ओनली एक्चुअल इमरजेंसी इन एंड्रोलॉजी। हमारी एंड्रोलॉजी में इमरजेंसीज नहीं होती है, इलेक्टिव सर्जरी होती है, खाली दो इमरजेंसी होती है। वन इमरजेंसी इज पिनाइल फ्रैक्चर। हर पिनाइल फ्रैक्चर का पेशेंट मना करता है कि वो सेक्स कर रहा था, वो आके यही बोलता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सो रहा था, मैं गिर गया, ठीक है। कोई मानता नहीं, हम भी नहीं मानते, बट वी डोंट वांट टू एम्बैरेस हिम, बिकॉज एनीवेज स्केयर्ड, देयर सो मच ब्लड एंड देयर इज सो मच स्वेलिंग, तो वी अग्री व्हाट एवर ही इज सेइंग, एंड द सर्ज एंड वी हैव टू इमीडिएटली रिपेयर इट।
ओके,
सो दैट इज वन। तो पिनाइल फ्रैक्चर मोस्टली हैपन्स थ्रू डायनेमिक फोर्स, एंड द सेकंड इज टेस्टिकुलर टॉर्जन। टॉर्जन मतलब टेस्टिस को घूम जाना, तो अ टेस्टिस इज लाइक अ ग्रेप, राइट, देयर इज नो सपोर्ट। तो समटाइम्स अगेन इन विगरस सेक्स, समटाइम्स टेस्टिस कैन जस्ट रोटेट, एंड देन अगेन इट्स वेरी पेनफुल, एंड देन पेशेंट को आना पड़ता है, उसको फिर से वापस सीधा करना पड़ता है।
कॉमन है,
वेरी कॉमन है। तो टॉर्जन इज अगेन अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, ऑलमोस्ट 1 in 100 मैन विल हैव इट इन द लाइफ टाइम, इट इज अ एक्यूट इमरजेंसी, एंड पेशेंट्स विल अगेन कम पेन लेके, एंड देन मेजर यूरोलॉजिस्ट उसको मैनेज करना पड़ता है।
ओके, देयर वाज वन वेरी वियर्ड क्वेश्चन, दैट वाज की क्या साइज ऑफ अंडरवेयर से फर्क पड़ता है फॉर पेनिस प्रोटेक्शन? आइडियल साइज ऑफ अंडरवेयर या आइडियल अंडरवेयर शेप पेनिस प्रोटेक्शन के लिए?
तो पेनिस प्रोटेक्शन के लिए कोई अंडरवेयर शेप नहीं होती है। ये क्वेश्चन यहाँ से आया है कि एक जिम कम्युनिटी में एक है कि लंगोट बांधने से या ज्यादा टाइट अंडरवेयर पहनने से पेनिस टेढ़ा हो जाता है। तो ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। अगर पेनिस को टेढ़ा होना है तो वो टेढ़ा हो सकता है। तो कर्वेचर, पेनिस कर्वेचर भी कॉमन डिजीज है।
Okay.
कई मैन के अंदर पेनिस टेढ़ा होता है, ठीक है। तो इट्स कर्व्ड, तो नॉर्मली 10-15 degrees, मतलब जो नॉर्मल बनाना शेप्ड है, अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स या लेफ्ट टू राइट नॉर्मल है, क्योंकि वो सेक्स में दिक्कत नहीं करता। और कर्वेचर बहुत ज़्यादा भी होता है कई लोगों में, बिल्कुल इट्स ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज या इट्स पॉइंटिंग कम्प्लीटली अपवर्ड्स, सेक्स पेनफुल है या उसमें कोई इंजरी हुई है, तो वहाँ पर वी नीड्स एक्सपर्ट ओपिनियन, हम हेल्प करते हैं। बट अंडरवेयर पहनने से पेनिस टेढ़ा नहीं होता।
अल्कोहल और सिगरेट से फर्क पड़ता है सेक्स लाइफ, पेनिस हेल्प?
तो सिगरेट अल्कोहल दोनों डिफरेंट कैटेगरीज है। वो सिगरेट तो किसी भी हालत में अच्छी चीज़ नहीं है, एज डॉक्टर्स मना ही करते हैं, बिकॉज सिगरेट की दो प्रॉब्लम्स है। पहला है सिगरेट कॉजेज कैंसर, ये प्रूवन है, सिगरेट इज अ कार्सिनोजन, ठीक है, तो सिगरेट स्मोकिंग से अपनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम कर रहे हो। सेकेंड है, सिगरेट स्मोकिंग से सेक्स और स्पर्म दोनों पे हार्म होता है, ठीक है। पहला जो निकोटिन है, निकोटिन वेजोस्पाज़म करता है, मतलब निकोटिन जैसे हमें पेनिस को खड़ा करने के लिए ब्लड चाहिए, निकोटिन कॉजेज कंट्रैक्शन, तो निकोटिन की वजह से इरेक्टाइल क्वालिटी खराब होती है। सेकेंड है, सेम स्पाज़म टेस्टिस में भी होता है, तो टेस्टिस की ब्लड सप्लाई खराब होती है, स्पर्म काउंट डिप होता है। एंड सिगरेट स्मोक में जो आपके टार है और जो स्मोक प्रोडक्ट्स है वो सबके सब कहीं ना कहीं स्पर्म काउंट को हार्म करते हैं। तो मेन लुकिंग टू फादर चिल्ड्रन शुड क्विट स्मोकिंग एटलीस्ट टिल प्रेगनेंसी इज ओवर, जब तक बच्चा ना हो जाए, प्रेगनेंसी ना हो जाए।
एंड अल्कोहल?
और अल्कोहल लो डोजेज में, मॉडरेट डोजेज में हेल्पफुल है,
फॉर हेल्पफुल है
हाँ, और हाई डोजेज में अल्कोहल जो है वो हार्मफुल है, अगर आप सेक्स की बात कर रहे हो।
नॉट टॉकिंग अबाउट,
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लिवर, टॉकिंग अबाउट जनरल हेल्थ,
ओके,
नॉट अबाउट सेक्सुअल रिस्पॉन्स। अगर आप सेक्स कर रहे हैं और आपने थोड़ा लो क्वालिटी में अल्कोहल लिया है, तो अल्कोहल के तीन काम होते हैं। वन, इट इज एंग्जोलिटिक, आपकी एंग्जाइटी कम करता है, ठीक है। सेकेंड है, अल्कोहल इज अ विजो डायलेटर, यू हैव अल्कोहल यू फील फ्लशिंग, बिकॉज इट डायलेट्स, ब्लड ज्यादा जाता है तो पेनिस में इरेक्शन थोड़ा इंप्रूव होता है। थर्ड है, अल्कोहल टाइमिंग बढ़ाने में हेल्प करता है, तो इफ यू आर वेरी एंग्शियस टू मीट योर पार्टनर, या आप लोग डेट नाइट पे हो, आपने थोड़ी वाइन ली है या थोड़ा सा अल्कोहल लिया है,
दो
विस्की की शॉट लिया, तो इट इज ओके, इट विल हेल्प यू। बट अगर आप स्लॉश हो गए हो, आपने बहुत ज्यादा अल्कोहल ले लिया, तो वो उल्टा काम करेगी, फिर आपका इरेक्शन भी डाउन जाएगा, आपको क्वालिटी भी इंप्रूव नहीं होगी, यू विल नॉट बी एबल टू एंजॉय सेक्स, बिकॉज देन इट एक्ट्स लाइक अ सप्रेसेंट। तो अल्कोहल इज अ स्टिमुलेंट इन लो डोज एंड इट्स अ डिप्रेसेंट इन हाई डोज। ये सेक्स की बात हो रही है।
वैसे एनीवे साइज डजंट मैटर और साइज डज मैटर?
साइज डज मैटर,
साइज डज मैटर,
साइज डज मैटर, साइज एब्सोल्युटली मैटर्स। तो देयर इज, इट इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि साइज डजंट मैटर। साइज डजंट मैटर इज लाइक अ हलवा गिवन टू समबडी विद अ स्मॉल साइज, की यार ठीक है, इट डजंट मैटर, कोई बात नहीं, इसलिए पुचकारने वाली बात, ठीक है। साइज मैटर्स बिकॉज इट इज अ वेरी कॉमन मिसकंसेप्शन कि फीमेल को पेनिस फील नहीं होता, ठीक है। तो ऑल द गायनेकोलॉजिस्ट एंड ऑल द फीमेल डॉक्टर्स विल ऑलवेज से कि नहीं, साइज मैटर नहीं करता, क्लिटोरिस को रब करना, ऐसा नहीं है। फीमेल्स में स्ट्रेच रिसेप्टर होता है, वजाइना में आप फिंगर डालोगे, फीमेल को फील होता है, ठीक है। सो इफ यू हैव अ गर्थी पेनिस, द फीमेल विल डेफिनेटली फील इट, उसको फीलिंग भी होगी, उसको एंजॉयमेंट भी ज्यादा होगा। इनफ स्टडीज हुई है यूके में, यूएस में, जहां पर क्वेश्चनेयर दिया है, एंड फीमेल्स विल ऑलवेज प्रेफर अ बिगर साइज, ठीक है। स्टडीज हुई है जिसमें फीमेल्स को पूछा गया है कि दे एंजॉयड सेक्स विद अ बिगर पार्टनर, ठीक है, एंड फीमेल्स का एग्जामिनेशन भी हुआ है वेयर दे वर एबल टू फील द स्ट्रेच, राइट, और स्ट्रेच से फीमेल को एंजॉय भी होता है, दे आर एबल टू एंजॉय इट ऑल्सो। तो अब बिगर साइज और अ बिगर एंडाउड मैन इज लकी, वो ऑब्वियसली ही विल बी एबल टू हैव सेक्स बेटर। इफ अगर साइज का गर्थ और लेंथ पूरा नहीं है, तो आपको और तरीकों से अपने आप को बेटर करना पड़ेगा। तो हम कहते हैं सेक्स के लिए ट्राइफेक्टा होता है, ट्राइफेक्टा मतलब कि तीन चीजें चाहिए, हार्डनेस, टाइमिंग और साइज। अगर साइज बहुत अच्छा है और हार्डनेस टाइमिंग नहीं है, तब भी यूजलेस है। अगर हार्डनेस टाइमिंग अच्छी है, तो आप साइज को कॉम्पनसेट कर सकते हो। बट अगर साइज बहुत कम है और जहां पर फीमेल पार्टनर को बिल्कुल पेनिस महसूस नहीं हो रहा है, तो ये रियल प्रॉब्लम है। तो इसके अंदर कपल्स आते हैं, बिकॉज इंडिया में अरेंज मैरिज कॉन्सेप्ट है, सिलेक्शन मैरिज कॉन्सेप्ट नहीं है। यूएस में, वेस्ट में, हर जगह पर सिलेक्शन मैरिज होती है कि आपने सेक्स किया, जहां आपको सेटिस्फेक्शन मिला वहां पर फिर शादी कर ली। इंडिया में अरेंज मैरिज होती है, आपको सेक्स से पहले पता नहीं होता कि क्या होने वाला है। तो कपल्स आते हैं जहां पर पिनाइल गर्थ बहुत कम है, पेनिस नहीं फील हो पा रहा पेशेंट को, तो उसमें थोड़ा सा हम फिलर डाल के थोड़ा गर्थ इंक्रीज करते हैं, तो द कपल्स आर एबल टू सेटिस्फाई ईच अदर। तो साइज मैटर्स, डेफिनेटली मैटर्स।
वेरी फर्स्ट टाइम समबडी हैज गिवन मी दिस डायरेक्ट आंसर, आई रियली अप्रिशिएट दैट यू डिड। क्योंकि हर कोई आके ये बोलता है साइज डजंट मैटर, ये नहीं होता, वो नहीं होता, कोई फर्क नहीं पड़ता।
नहीं नहीं, बिल्कुल मैटर करता है।
फोर प्ले ज्यादा मैटर करता है, ये ज्यादा मैटर करता है, वो ज्यादा मैटर करता है, टेक्निक ज्यादा मैटर करती है। बट स्टिल व्हेन यू आस्क वेमेन कैंडिडली, यू आस्क ऑल योर फ्रेंड्स, वो सब बोलेंगे, एवरीबडी, मोस्ट ऑफ द पीपल से दैट
एवरी वुमन विल से साइज मैटर्स, लाइक फॉर अस ब्रेस्ट मैटर्स, मेन के लिए बूब्स मैटर करते हैं, ठीक है। अब वो कोई बोलोगे नहीं मैटर करते, तो सो एवरी मैन हैज अ प्रेफरेंस, एवरी मैन हैज हैज द चॉइस, समबडी लाइक्स पतित फिगर, समबडी लाइक्स मोर बक्सम लेडी, हर किसी का चॉइस है, ठीक है. सिमिलरली वुमेन के लिए भी है.
फेयर. ओके, आई हैव वन लास्ट सेगमेंट विच इज मिथ्स एंड फैक्ट्स.
ओके
ओके, तो मुझे बताना है मिथ है कि फैक्ट है. फर्स्ट इज कि इफ यू हैव ट्रबल गेटिंग इन इरेक्शन इट्स बिकॉज यू आर नॉट अट्रैक्टेड टू योर पार्टनर. मिथ और फैक्ट?
मिथ.
ओके. पिल्स आर द ओनली वे टू ट्रीट इरेक्टाइल डिसफंक्शन?
मिथ.
आई कैन ट्रीट ईडी माई सेल्फ विदाउट सीइंग अ डॉक्टर बाय जस्ट यूजिंग हर्बल रेमेडीज एंड सप्लीमेंट्स?
मिथ. मिथ एंड फैक्ट बोथ. अर्ली स्टेजेस यस, बट इफ इट्स
लेट स्टेज में नहीं होना.
लेट स्टेज में नहीं होगा.
ईडी मे बी अपसेटिंग बट देयर इज नथिंग डेंजरस अबाउट इट.
अगेन मिथ. ईडी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ मेल्स लाइफ. इफ यू हैव ईडी यू आर मिसिंग आउट ऑन सो मच प्लेजर.
Although ED itself isn't dangerous, but it can be an early sign of a serious health condition such as heart problem or diabetes. Do you fact. Think so? It's a fact?
It's a fact. So, the penis, the arteries of the penis, जो penis की नसें हैं और जो heart की नसें same size की होती है. तो ये study है और ये research है कि जिन लोगों को erectile dysfunction develop होता है, उनका heart attack आने का chance अगले 5 साल में 30% है.
क्या बात कर रहे
हैं? Yes. तो आज के दिन जो AUA है, American Association की guidelines है, वो कहती है कि ईडी के पेशेंट में एंजियोग्राफी होनी चाहिए. तो ईडी मे बी द फर्स्ट साइन ऑफ हार्ट डिजीज.
ओके, वेल परफेक्ट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए. मुझे प्लीज कमेंट्स में आप फीडबैक दो और बताओ कि कहां हमने गलती की है, ताकि अगली बार जब इतना बड़ा स्टार आए तो उनसे हम और भी बेहतर पॉडकास्ट बनाएं और आपके लिए बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर सकें. ये एपिसोड खत्म करने से पहले प्लीज ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि वन कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज समवन्स लाइफ. जिसको भी इस एपिसोड से इंस्पिरेशन मिलेगी या उसकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा, उसके साथ ये एपिसोड शेयर करना मत भूलना. आई सी यू नेक्स्ट टाइम. अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट.